సమవేత గౌర భక్తబిందకి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞానాతిమిరంధస్య జ్ఞానంజనాశలాకయ చక్షురుమ్మితం యేన తస్మే శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపకదామయ్యం దదాంతి స్వపదాంతికం. వందే అహం శ్రీగురు శ్రీయూతపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథానితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసైతం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సగణ లలిత శ్రీ విశాఖానితం చ. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభయేవ చ. పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమమహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమా ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్యనామినే గౌరతిసే నమః. సంకర్షణ కారణత సాయి గర్భోదసాయి చ పయోధి సాయి శేషస్య జస్యాం సహ సకళస నిత్యానందాక్షర రామం శరణం మమాస్తు. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కంత రాధా కంత నమస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరీ విషభానుసుతే దేవీ ప్రణమామి హరిప్రియే. ఓం నీలాంచల నివాసాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే బలభద్ర సుభద్రాభ్యాం జగన్నాథాయ తే నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసాది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సభీ భక్తంకు స్నాన యాత్ర ఉత్సవం మే స్వాగత హై. తో ఆజ్ బహుత్ హి పవిత్ర దిన్ హై స్నాన యాత్ర. ఔర్ तो आज हम लोग भागवतम की जगह भगवान श्री जगन्नाथ के कुछ कथाओं को सुनेंगे. जैसे हम सबको पता है कि भगवान कृष्ण की जन्म उत्सव को जन्माष्टमी कहते हैं और भगवान राम के नाम रामनवमी. तो हम जन्माष्टमी रामनवमी ये सब उत्सवों को बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं. ठीक उसी प्रकार से जैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं वैसे ये स्नान यात्रा जगन्नाथ जी का जन्मदिन है. स्नान यात्रा जगन्नाथ जी का जन्मदिन. वैसे श्री भगवान का उत्सव मनाने के लिए या उत्सव प्रतिदिन होता है. कुछ ना कुछ उत्सव होते हैं और मनाते हैं हर जगह कहीं ना कहीं. और भगवान लीलाएं करते हैं इस प्रकार के उत्सवों को भक्त लोग मनाने के लिए या उनके गुणगानों को सुनने के लिए, इसलिए भगवान भी लीलाएं करते हैं. तो जिस प्रकार से जन्माष्टमी मनाते हैं वैसे आज हम लोगों ने स्नान यात्रा उत्सव मनाएंगे. स्नान यात्रा, इस शब्द का अर्थ इस प्रकार है, स्नान में मतलब एकदम सरल है और सबको पता है, नहाना या नहलाना इसको स्नान कहते हैं। यात्रा महोत्सव उत्सव है ना, फेस्टिवल है। मगर ये कैसी फेस्टिवल है, ये कैसी स्नान यात्रा है? सभी व्यक्ति स्नान कैसे करते हैं, बाथरूम में या तालाब में, मगर भगवान का स्नान पब्लिकली होता है, पब्लिक वाथिंग सेरेमनी ना, जनसाधारण के सामने भगवान को नहलाना, वो स्नान यात्रा है, वो उत्सव। यहाँ पे हमारे सामने जगन्नाथ जी को अभिषेक करेंगे भक्त लोग, और वहाँ जगन्नाथपुरी में जो कि जगन्नाथ जी का नित्य निवास स्थान है, पुरुषोत्तम क्षेत्र, वहाँ पे भी इसी प्रकार से सभी भक्तों के सामने जगन्नाथ जी का स्नान किया जाता है। वैसे भगवान की ये अर्चन पद्धति के अनुसार, पंचरात्रिक पद्धति के अनुसार रोज उनका अभिषेक होता है, उनको नहलाया जाता है सुबह, पुजारी लोग उनको उठाते हैं, आसमन कराते हैं, नहलाते हैं। मगर कभी कभी राधा कृष्ण शालिग्राम इन सारे विग्रहों को पुजारी लोग रोज उनको पंचामृत से वो अभिषेक कर सकते हैं, मगर जगन्नाथ जी के लिए रोज अभिषेक की विधि नहीं है, रोज अभिषेक नहीं कर सकते हैं, या नहीं करना चाहिए, नहीं करते हैं। ये केवल साल में एक बार भगवान जगन्नाथ जी को स्नान किए करवाया जाता है या अभिषेक करवाया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी भी कुछ खतों में अपने भक्तों के पास लिखते हैं कि जगन्नाथ जी को रोज नहलाने की आवश्यकता नहीं है और नहीं नहलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल देखा जाए, भगवान जो श्री जगन्नाथ है वो कैसे ब्रह्म है, दारू ब्रह्म है, वो लकड़ी से बने हुए हैं, है ना। इसलिए अगर रोज उनका अभिषेक किया जाएगा पानी से तो फिर वो खराब हो सकता है विग्रह, अतः ये नहीं किया जाता है। मंत्रों के द्वारा उनका अभिषेक किया जाता है प्रतिदिन, परंतु साल में एक बार जगन्नाथ जी को संपूर्ण पानी से नहलाते हैं, उसको स्नान यात्रा उत्सव कहते हैं। और यही है जगन्नाथ जी का जन्मदिन, जन्मोत्सव है जगन्नाथ जी का, जैसे कृष्ण का जन्माष्टमी है। मगर एक विचारणीय बात है, क्या विचारणीय बात है, कि जगन्नाथ कौन है? कृष्ण है। अगर जगन्नाथ कृष्ण है तो कृष्ण का जन्म कभी हुआ था? जन्माष्टमी के दिन, तो हम तो वो मना रहे हैं, फिर ये स्नान यात्रा क्या है? क्या वो जगन्नाथ जी का जन्म नहीं कहा जाएगा जब कृष्ण जन्म हुए थे? हाँ, भगवान जगन्नाथ कृष्ण स्वयं है और ये जन्माष्टमी भी उनका ही जन्मदिन मनाया जा रहा है, परंतु आज के दिन, ये ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही कृष्ण, बलराम और सुभद्रा मैया इस प्रकार जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा का रूप को धारण किए थे। ऐसे अलग अलग ग्रंथों में और भी बातें पता लगता है, कुछ ग्रंथों में ये भी लिखा गया है कि आज के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही ये जगन्नाथ जी का विग्रह को श्री मंदिर में स्थापना किया गया था, या पुरी का जो मेन मंदिर है जगन्नाथपुरी, वहां स्थापना किया गया था, ये भी ग्रंथों में बतलाया गया है। मगर श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज इस बात को, इस शंका को दूर करते हुए कहते हैं, आज के दिन ही कृष्ण, बलराम और सुभद्रा इस प्रकार से जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा का रूप को धारण किए थे। उनका आंखें बड़े हो गए थे, मुंह बड़ा हो गया था, हाथ छोटा छोटा हो गया था, ये आज के दिन था, ये ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन, अतः आज के दिन को ये जगन्नाथ जी का जन्मदिन करके माना जाता है। परंतु खास करके स्कंद पुराण में स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आविर्भाव होता हूँ, अतः इस दिन मेरा अभिषेक होना चाहिए। ऐसे भगवान सीधा इंस्ट्रक्शन देते हैं किसको, ब्रह्मा जी को, कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही मैं आविर्भाव होता हूँ, अतः इस दिन मेरा अभिषेक होना चाहिए, स्नान यात्रा उत्सव मनाना चाहिए करके ये भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को कहते हैं। वैसे जगन्नाथ पुरी में या खास करके जगन्नाथ जी का अनेकों उत्सव हैं, अनंत अनेकों उत्सवों को जगन्नाथपुरी में भक्त लोगों ने जगन्नाथ जी के लिए मनाते हैं। उसमें से एक उत्सव है स्नान यात्रा। जैसे पिछली बार स्नान यात्रा को भी हम चर्चा कर रहे थे कि श्री भगवान के अनेकों उत्सवों में से 13 उत्सव मुख्य हैं, 13 फेस्टिवल्स, 13 फेस्टिवल्स जो मेन फेस्टिवल्स है जगन्नाथपुरी का। ऐसे उड़िया में एक कहावत भी है, 12 मासे 13 जात, है ना, कहते ना 12 मासे 13 जात, 12 मासे मीन 12 मंथ, 12 महीनों में फेस्टिवल्स कितना है, 13 फेस्टिवल्स हैं। मगर खास करके स्कंद पुराण में और नीलाद्री महोदय करके ग्रंथ है, उसमें ये 12 महीनों में 12 मुख्य फेस्टिवल्स के बारे में ही बताया गया है, 13 नहीं। मगर उड़ीसा के लोक कथा के अनुसार 12 मास से 13 जाते नहीं, 12 महीनों में 13 फेस्टिवल्स होते हैं करके उड़ीसा के लोक कथा में है। मगर होता है 13 फेस्टिवल, एक ऐसी फेस्टिवल है जिसको गोपनीय रूप से किया जाता है, वो सबको पता नहीं लगता है, इसलिए 12 महीने में 13 फेस्टिवल होता है करके बताया गया है और उसका डिस्क्रिप्शन भी है। परंतु केवल ये 13 फेस्टिवल से जगन्नाथ संतुष्ट नहीं होते या भगवान के भक्त संतुष्ट नहीं होते, साल भर प्रतिदिन कुछ ना कुछ जगन्नाथ जी का उत्सव है, चलते रहते हैं। पिछली बार हम पढ़ रहे थे कुछ 50 या 58 ऐसे कुछ उत्सवों के बारे में, इस बार हम एक ग्रंथ देखे उसमें 200 से ज्यादा उत्सवों के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। तो इसका अर्थ यह है कि हम गिन नहीं सकते कितना उत्सव कभी होता है। और खास करके समस्या यह है कि जगन्नाथ जी का जो सेवा पूजा होता है वो कोई विधि विधानों के हिसाब से नहीं होता है। कमल लोचन प्रभु अपने प्रवचन में बताया कर रहे थे कि भगवान की सेवा पूजा 3 प्रकार की विधि से होना चाहिए, एक है पंचरात्रिक विधि से, एक है वैदिक विधि से, नहीं तो और एक है तांत्रिक विधि से। ऐसे 3 प्रकार की पद्धतियों को बताया गया भगवान श्री विष्णु की उपासना के लिए। जैसे हमारे मंदिरों में हम पंचरात्रिक विधि से भगवान की अर्चना उपासना करते हैं, जो कि ऊंचे ये स्टैंडर्ड सबसे ऊंचा है। फिर वैदिक पद्धति है और एक है तांत्रिक पद्धति, कहीं कहीं पे तांत्रिक विधि से भी भगवान की उपासना की जाती है। खास करके तांत्रिक पद्धति देवियों को और शिव जी का उपासना इस पद्धति से होता है। परंतु जगन्नाथ पुरी में जो पंडे लोग या वहां के पुजारी लोग जो जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं, उनका ये कोई विधि नहीं है, ना पंचतात्रिक, ना वैदिक, ना तांत्रिक, कुछ नहीं है, उनका कुछ अलग ही विधि है। उस विधि को पंथ करके कहा जाता है। पंथ का अर्थ यह है कि परंपरा से जो चलता आ रहा है उसी हिसाब से करना, और जो पहले से कर रहे हैं वो लिखते लिखते एक ग्रंथ बन जाता है और उस हिसाब से करते हैं। कभी कभी अगर कोई बड़े उसी कोटि के भक्त हुए या कोई राजा हुए, उन्होंने अगर उस सेवा में कुछ चेंजेस लाए और कुछ ऐड किए तो वो ऐड हो जाएगा उसमें, इसको कहते हैं पंथ। इस प्रकार से पंडरपुर में भी ऐसे ही होता है सेवा पूजा, पंथ है वो, उनके हिसाब से करते हैं। इसीलिए कभी कभी हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनम संघ के भक्त लोग अगर जगन्नाथपुरी के पुजारियों से और उनके पूजा विधियों को देखते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि हम यहाँ पे एकदम से स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं और कैसे पूजा विधियों को देख रहे हैं, वहाँ जाने से एक प्रकार से अजीब सा लगता है। तो इसीलिए वहाँ के उत्सव अनेकों हैं, वहाँ के भक्त लोग इन उत्सवों को पालन करते हैं, मगर शास्त्रों में कहना है कि 12 मेन फेस्टिवल्स है और उड़ीसा के लोक कथा के अनुसार 13 मेन फेस्टिवल्स है, ऐसे बताया गया है। इन सारे उत्सवों में से सबसे पहला उत्सव होता है स्नान यात्रा। क्यों? क्योंकि ये जन्मदिन है, जन्म के बाद ही बाकी सब उत्सव चालू होगा। जैसे जन्माष्टमी, कृष्ण की लीलाएं कैसे चालू हुआ? कृष्ण जन्म हुए, उसके बाद बाकी लीलाएं हुआ। वैसे श्री जगन्नाथ जी का जो बाकी उत्सव है आज से शुरू होता है, जन्माष्टमी से, ये स्नान यात्रा से। मगर इससे पहले भी एक उत्सव अभी रिसेंटली हुआ है कि रुक्मिणी विवाह भी वहां पे होता है, कि कैसे कृष्ण रुक्मिणी मैया के साथ विवाह किए थे। एक ऐसी कथा है एक ग्रंथ में हम पढ़ रहे थे कि अभी अभी रुक्मिणी विवाह हुआ और रुक्मिणी विवाह के बाद बर्थडे आया कृष्ण का। रुक्मिणी से विवाह किए, नया पत्नी आई या नया बहू आई, और नया बहू आई तुरंत उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, और बर्थडे सेलिब्रेशन में उनके भक्त लोगों ने इतना पानी से नहलाया कि उनको बीमार कर दिया। बीमार करके भक्त लोग छोड़ दिए, सेवा कौन कर रही है? रुक्मिणी मैया। अभी लक्ष्मी या रुक्मिणी वो अभी सेवा करेगी 15 दिनों तक। अब ये 15 दिनों तक सेवा करते करते कंटिन्यूस रात को सोएगी नहीं, खाएगी नहीं, और सेवा करती रहेगी जगन्नाथ जी का। सेवा करते करते 15 दिन में वो एक रात को क्या होगा, थोड़ा सा आंख बंद हो जाएगा रुक्मिणी मैया का, और जैसे थोड़ा आंख झपकी ली रहेगी, तीनों भाई बहन उठ के वो निकल गए रहेंगे राधा रानी के पास या वृंदावन में। खो उठ के ढूंढेगी कहाँ गए, 15 दिनों से सेवा कर रही हूँ और अभी कहाँ वो चले गए। तो ऐसी अभी रुक्मिणी विवाह का उत्सव हुआ है पुरी में, फिर आज स्नान यात्रा है। तो इस स्नान यात्रा के बारे में स्कंद पुराण में लिखा गया कोई समय का निर्धारित नहीं होता है, ये टाइम पे करना चाहिए अभिषेक, ये टाइम पे करना चाहिए, समय की निर्धारित नहीं किया जाता है। मगर और भी विधि विधान है कि स्नान यात्रा किस प्रकार से करना चाहिए। हम भगवान की कुछ लीलाओं को श्रवण करने से पहले जगन्नाथ पुरी में खास करके जगन्नाथ जी का किस प्रकार से स्नान करवाते हैं और क्या क्या कुछ विधि विधान है, उन लोगों को ध्यान देंगे। क्योंकि मुख्यतः जगन्नाथ जी निवास कहाँ करते हैं? जगन्नाथ पुरी में। देखिए, एक बार मैं सुन रहा था कमल रचन के प्रवचन में कि जैसे वैकुंठ है आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत में अलग अलग भगवान के अवतारों के लिए अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम है या अलग अलग लोक हैं। अयोध्या है जहाँ राम रहते हैं, वैसे नृसिंह भगवान रहने के लिए एक जगह है, वराह भगवान रहते हैं, मत्स्य भगवान रहते हैं, हाँ ऐसे अलग अलग अवतार अलग अलग प्लैनेटरी में रहते हैं, कहाँ? वैकुंठ में। और उस जगह से वो आते हैं या अवतरित होते हैं अपना लीला करके, फिर वो वापस चले जाते हैं। जैसे भगवान नृसिंहदेव आए थे, नृसिंहदेव केवल यहीं पे प्रकट हुए ऐसा नहीं, वो पहले से थे आध्यात्मिक जगत में उसी नृसिंह रूप में और यहाँ अवतरित हुए अपना लीला करने के लिए और फिर वापस चले गए थे। उस हिसाब से देखें तो जगन्नाथ जी के लिए कोई स्पेशल प्लेनेटरी सिस्टम वैकुंठ में नहीं है। जगन्नाथ जी के रूप में कोई वैकुंठ में कोई भगवान नहीं रहते हैं। जगन्नाथ जी के रूप में केवल भगवान कहाँ रहते हैं? जगन्नाथ पुरी में रहते हैं। अतः इसे भू वैकुंठ कहा गया है, इसे भू वैकुंठ। भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर स्थित वैकुंठ, इसलिए इसीलिए उसको भू वैकुंठ कहा जाता है। क्योंकि जगन्नाथ जी का रूप वैकुंठ में नहीं, केवल यहाँ पर है, इस धराधाम में है। तो इसीलिए जगन्नाथ जी का जो भी लीलाएं हैं वो पास्ट टाइम जगन्नाथपुरी में वे करते हैं। तो स्नान यात्रा, स्नान यात्रा उत्सव जगन्नाथपुरी में कैसा होता है? श्री जगन्नाथ भगवान खास करके ब्रह्मा जी को कहते हैं इस दिन मेरा अभिषेक होना चाहिए क्योंकि मैं इस दिन आविर्भाव हुआ था। चाहे वो भगवान उसी दिन उस रूप को धारण करें या उसी दिन उनका इंस्टॉलेशन सेरेमनी या स्थापना का उत्सव हो, जो भी हो, मगर ये स्नान यात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो स्नान यात्रा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जिस प्रकार से जगन्नाथ रथ यात्रा का फेस्टिवल है। जैसे रथ यात्रा के समय हजारों हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां पर आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, वैसे स्नान यात्रा में भी उड़ीसा से हजार हजार लोग जगन्नाथ पुरी जाते हैं स्नान यात्रा दर्शन करने के लिए। तो आप लोग सोचेंगे हजार हजार लोग कैसे देखते हैं, हमारे इधर हजार हजार लोग आएंगे तो हम लोग नहीं, दर्शन नहीं हो पाएगा स्नान यात्रा। मगर वहां पे स्नान मंडप ऐसा बनाया गया कि लोग आराम से रोड में कई दूर तक रह के भी जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि वहां जगन्नाथ जी भी विशाल काय है, बहुत बड़े, बहुत दूर से वो दिखेंगे। और दूसरा, वो स्नान मंडप भी लोगों को देखने के लिए ऐसा बनाया गया। वो ग्रंथ में स्कंद पुराण में भी भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मेरा स्नान मंडप कैसा होना चाहिए। वहां पे भगवान कहते हैं कि मेरा स्नान मंडप ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग और साथ साथ में सभी देवता भी आसानी से मुझे देख सकें, मेरा स्नान का दर्शन कर सके, स्नान यात्रा का दर्शन, उत्सव का दर्शन कर सके। अतः उस स्नान मंडप को एकदम से ऐसे खुला बनाया गया है। जो भक्त लोग पूरी गए वो देखे होंगे, रोड से भी ये स्नान मंडप क्लियरली हमको दिखता है, ऐसे बनाया गया। तो जगन्नाथ जी को वहां लाते हैं स्नान कराने के लिए। स्नान यात्रा की दो तीन दिन पहले जगन्नाथ मंदिर के जो हस्ती द्वार के और एक शीतला देवी का मंदिर है, उस मंदिर के बाजू में एक कुआं है। वो कुआं एक्चुअली दिखता नहीं है किसी को, उसको ढक के रखा हुआ रहता है, उसको सोना सुना कुआं या सोने का कुआं बोलते हैं, गोल्डन वेल। कौन कौन देखे उसको, सोने का कुआं पुरी में मंदिर के अंदर ही है। वो जो अश्व द्वार है, चार गेट से जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए, जो मेन गेट है वो लायन गेट या सिंह द्वार, जो पीछे है वो अश्व द्वार व्याघ्र द्वार, और दक्षिण के तरफ जो है वो अश्व द्वार, और उत्तर की तरफ जो है वो हस्ती द्वार, मतलब हाथी खड़ा है वहां पर। ये हस्ती द्वार में एक कुआं है, उस कुआं को सोना कुआं यानी गोल्डन एल या सोने का कुआं कहते हैं। ये कुआं ऊपर नहीं उठाया गया है, एकदम ग्राउंड लेवल में है और उसके ऊपर पत्थर या लकड़ी डाल के रखे हुए रहते हैं, वो समझ में नहीं आता आसानी से। इस कुएं को स्नान यात्रा के तीन चार दिन पहले उसको साफ किया जाता है। ये साल में केवल एक बार खुलेगा ये कुआं, और साल भर फिर से बंद रहेगा। ये चार दिन पहले उसको खोलेंगे, खोल के उसको साफ करेंगे, उसको नीचे उतर कर इस कुएं को साफ करेंगे। और ये कुएं के अंदर का जो पानी है फ्रिज के पानी से भी और ठंडा रहता है, इतना ठंडा पानी होता है उस कुएं के अंदर का, क्योंकि साल भर बंद भी रहता है और ग्राउंड के लेवल में रहता है, सनलाइट भी नहीं जाता उधर। तो चार दिन पहले उसको साफ करते हैं। साफ करने के बाद उसमें अनेकों प्रकार की पवित्र करने के लिए वहां पे कुछ पूजा इत्यादि करते हैं, और स्नान यात्रा के पूर्व दिन यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के पूर्व दिन यानी कल रात को, ये जो रात गया उस रात को क्या करेंगे, उस कुएं में से 108 घड़ों में पानी भर के निकालेंगे। एक्चुअली स्कंद पुराण में लिखा गया कि सोना या सिल्वर का मटका होना चाहिए, अभी मुझे नहीं मालूम कौन सा मटका यूज करते हैं, मगर 108 मटके में पानी निकालेंगे वहां से। ये पानी लेके जाएंगे भोग मंडप में। ये भोग मंडप को अधिवास गृह कहते हैं, अधिवास गृह, क्योंकि ये अभिषेक करने का जो पानी है वो रात को वहां रखेंगे, अधिवास करेंगे वहां पर, क्योंकि हरेक उत्सव से पहले पहली रात को अधिवास होता है ना, ठीक वैसे ही उस सोने के कुएं से 108 मटका भरकर पानी, ठंडा पानी निकाल के ये भक्त लोगों ने, अलग अलग लोग होते हैं, देखिए जगन्नाथपुरी में हरेक अलग अलग सेवा के लिए अलग अलग कैटेगरी के पंडे लोग होते हैं, उनका साल भर में वही काम रहेगा और कुछ नहीं करेंगे। कुछ लोग हैं अगर वो मटका बनाते हैं तो साल भर मटका बनाएंगे, जो लोग पूजा करते हैं तो साल भर वही करेंगे और उनके बच्चे बच्चे वही काम करेंगे, और कोई झंडा चढ़ाता है ऊपर, शाम को आप लोग देखे रहेंगे, तो उसके बाद उसके पुत्र उनका बच्चा झंडा चढ़ाएगा और उनका परंपरा वही काम करता रहेगा, वो एक ही काम करेंगे और मंदिर से उनका जो भरण पोषण है पूरा होता है, ऐसा एक ही छोटा सेवा रहेगा। जो पानी निकालते हैं भगवान के लिए कंटिन्यूस उनका बच्चा बच्चा वही पानी निकालने का काम करेंगे, दूसरा सेवा नहीं। तो वैसे है वो जो कुएं को छानने वाले साफ करने वाले अलग होते हैं, फिर कुछ मुदी रथ कहते हैं उनको, और कुछ ऐसे पुजारी हैं जिन लोगों ने पानी 108 घड़ों में भर के अधिवास गृह में रखते हैं, 108 घड़ों के पानी। ये अधिवास गृह में पानी रख के फिर कुछ पूजा विधि होता है, उस पूजा विधि के दौरान इन सारे पानी में 108 घड़ों में कर्पूर चंदन अलग अलग प्रकार के सुगंधित द्रव्यों को डालते हैं, तुलसी पत्ता इत्यादियों को डालते हैं, और हरेक मटके के ऊपर एक एक नारियल रखते हैं जिसको कुंभ कहते हैं हम लोग ना, शुभ कुंभ बोलते हैं ना, वो कुंभ 108 कुंभ बनाते हैं हरेक मटके के ऊपर नारियल रख के। ये रात को होके वो रूम को बंद कर देते हैं, ये काम हो गया। फिर यहाँ जगन्नाथ जी का क्या होता है, जगन्नाथ जी का नाइट ड्रेसिंग होता है, नाइट ड्रेसिंग को क्या कहते हैं, बड़ा श्रृंगार वेश। एक्चुअली श्रृंगार आरती अपना कितने बजे होता है, 7 बजे है ना, 7:15 बजे होता है श्रृंगार आरती, मगर जगन्नाथपुरी में श्रृंगार आरती रात को होता है भगवान का। दिन भर सिंपल ड्रेस में रहेंगे, कभी कभी हार भी नहीं पहनाए हुए रहेंगे, एक कपड़े में ऐसे रहेंगे जगन्नाथ, मगर रात को जो श्रृंगार करते हैं वो सबसे महंगा और सबसे सजावट रात को होता है, और बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है जगन्नाथ जी को रात को, इसे बड़ा श्रृंगार वेश कहते हैं। मगर हम लोग रात, हम लोग क्या करते हैं, दिन में सजाते हैं, दिन भर भक्त दर्शन करते हैं अच्छी तरह से, और रात को सारे सजावट उतार देते हैं, एक ही कपड़ा पहना के सुला देते हैं, मगर वहां रात को सजा के सुलाते हैं। क्यों पता है, क्योंकि वे कौन है, श्याम सुंदर कृष्ण, और रात को राधा और गोपियां उनसे मिलने आते हैं, अतः रात को ड्रेसिंग करके वो रहते हैं, ये भाव है। उसके पीछे एक लंबी कथा है कि रात को क्यों ड्रेसिंग होता है और खास करके ये इतना फूलों से क्यों सजाया जाता है। एक बार ये झगड़ा हुआ था, एक महाराज थे कपिलेंद्र देव करके एक महाराज थे, उनके समय पे ये भगवान जगन्नाथ जी के बहुत ऊंचे कोटि के भक्त थे ये राजा। तो राजा प्रति हरेक राजा रोज आते हैं दर्शन करके निकलते हैं, मगर ये राजा इतने भक्त थे कि ये प्रतिदिन आके वो जगन्नाथ जी को ड्रेसिंग करते थे अपने हाथों से, खुद से ड्रेसिंग करते थे जगन्नाथ जी का, है ना, उत्साह से, और प्रतिदिन ड्रेसिंग करके वो जाते थे। समस्या क्या हुआ, एक ब्राह्मण थे एक पंडे, वो पंडा भी जगन्नाथ जी को ड्रेसिंग के सेवा में थे, मगर दोनों में मतभेद हुआ, क्योंकि राजा ऐश्वर्य मूड में है, ऐश्वर्य की भावना में है, तो राजा समझते हैं कि जगन्नाथ जो है वो द्वारकाधीश है, तो उनका मुकुट होना चाहिए, उनके अस्त्र शस्त्र होना चाहिए, सोने और अलंकारों से उनको सजाना चाहिए, तो एकदम राजा जैसा सजा के प्रणाम करके वो चले जाते हैं। वो जाने के बाद जब ये पुजारी आते हैं, ये पुजारी देखते हैं कि ये क्या क्या इतना भारी भारी मुकुट सर पे लाद दिया, इतना बड़ा बड़ा अस्त्र शस्त्र पकड़ा दिए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये श्याम सुंदर को पसंद नहीं है। श्याम सुंदर तो एक गामछे में रहते हैं, उनके कमर में एक बांसुरी होता है और मोर पंख होता है सर पे, और एकदम खुले रहते हैं। ये है श्याम सुंदर, वृंदावन के कृष्ण, यशोदा के नंद के पुत्र। अतः राजा जाने के बाद वो पुजारी क्या करते हैं, रोज आके वो ड्रेसिंग उतार देते हैं और ये श्याम सुंदर कृष्ण जैसा ड्रेसिंग करके दिन भर रहता है। ये रोज हुआ करता था, राजा राजा जैसा सजा के जाते थे, पुजारी आके उसको उतार के फिर से सजा देते थे। तो ये बात राजा को पता नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा घर में जाने के बाद दोबारा वो आए थे दर्शन करने के लिए, मगर इस बार दर्शन आके जब भी दर्शन किए तभी देखे कि ये क्या हुआ, मैं तो कितना अच्छा सजा के गया था, जगन्नाथ जी का ड्रेसिंग किया था, मगर कोई ड्रेसिंग उतार दिया पूरा, और उतर के ये क्या, उनका पगड़ी भी बांध दिया, उसमें मोर पंख लगा दिया, शरीर में कुछ नहीं है, सब फूलों से सजाया हुआ है, कोई अलंकार नहीं है, सोना चांदी नहीं है, सब फूल फूल है, चारों तरफ फूलों से सजाया हुआ। तो तभी वो इंक्वायरी किए, जब इंक्वायरी किए उस ब्राह्मण का नाम आया, वो पंडे का। तो पंडे को राजा बुलाए अपने दरबार में, दरबार में बुलाने के बाद उनके साथ विचार विमर्श किए। तो पंडे का कहना है कि देखिए वो राजा नहीं है, वे श्याम सुंदर कृष्ण है। वृंदावन के कृष्ण को इतना भारी सा मुकुट पहना दोगे और अस्त्र शस्त्र रखोगे तो कितना भारी लगेगा उनको, तो इसीलिए उनको ऐसे सजाना चाहिए ताकि वो प्रसन्न रहेंगे। राजा बोले कि नहीं, ये तो द्वारका है जगन्नाथपुरी, ये द्वारकाधीश है, यहाँ पे ऐश्वर्य भाव में रहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में कलह उत्पन्न हुआ, ये लंबा समय खींचा, तो ये कोई निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाए। अतः दोनों ने, राजा और पंडे मिलके, एक लोकल प्रिस्ट, एक लोकल ऋषि थे वहां के, वहां रहने वाले एक ऋषि थे, ऋषि का नाम था मुद्गला ऋषि। ये मुद्गला ऋषि के पास दोनों गए, राजा और ये पुजारी। दोनों जाके राजा अपना तर्क प्रस्तुत किए, पुजारी अपना तर्क प्रस्तुत किए। दोनों का तर्क एकदम ध्यान पूर्वक सुनने के बाद ऋषि का कहना है कि राजा गलत नहीं, पुजारी भी गलत नहीं, मगर मुझे डिसीजन लेने में समय लगेगा, क्योंकि मैं कोई निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाता हूं। क्या ऐसा हो सकता है, जब तक मैं डिसीजन नहीं ले लेता हूं तब तक आप दोनों मेरे पास रुको, मेरे आश्रम में। राजा भी राजी हो गए, पुजारी भी राजी हो गए। तो रोज जगन्नाथपुरी से प्रसाद उन दोनों के लिए आता था, मुद्गल ऋषि के आश्रम में रुक के राजा और ये पुजारी वहां खाते थे। मगर वहां पे और एक घटना घटी। वहां पे क्या हुआ, राजा आराम से खाकर रहते थे, जब ये ब्राह्मण खाया प्रसाद खाते थे, तो वैष्णवों का ये नियम है कि भगवान के प्रसाद को स्वीकार करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए, प्रसाद प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। तो ब्राह्मण हमेशा क्या करते थे, जैसे प्रसाद आया, प्रसाद को सामने रख के वो प्रसाद मंत्र बोलने लगे, आंख बंद करके प्रसाद मंत्र बोले, ध्यान पूर्वक आंख खोले तो उनके सामने प्लेट गायब, प्लेट नहीं था। वो दुखी हो गए, बोले कि पता नहीं जगन्नाथ जी का क्या इच्छा है, क्या वो मुझे भूखा रखना चाहते हैं या क्या लीला है, मुझे नहीं मालूम। तो वे तो स्वराट है, मैं उनकी इच्छाओं में कैसे, उनका इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकता हूं करके वो दोबारा प्रयास नहीं किए खाने के लिए, छोड़ दिए। दूसरे दिन प्रसाद आया, ठीक उसी प्रकार से वो प्रणाम मंत्र बोले तो प्रसाद गायब हो गया। जब भी तीसरा दिन ऐसा हुआ, उन्हें शंका हुआ, क्यों ऐसा, क्या भगवान सच में मुझे भूखा रखना चाहते हैं, प्रसाद नहीं दे रहे हैं। तो वे ध्यान पूर्वक मंत्र भी बोल रहे थे मगर आंख को आधा बंद किए थे, थोड़ा थोड़ा सा देख रहे थे। तभी दिखाई पड़ी कि एक एकदम वृद्ध व्यक्ति, जैसे कि हिल रहे हैं, हवा होगा तो गिर जाएंगे, इतना वृद्ध व्यक्ति है, एक लकड़ी लेके एकदम से झुक झुक के चल चल के आ रहा है और आके वो प्रसाद की थाली को लेके जाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो तभी ये ब्राह्मण, ये पंडे आंख खोले बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप रुकिए, आप इतने वृद्ध हैं, आप जाइए मत, यहां बैठ के प्रसाद पाइए। वो उनको रोकने के लिए प्रयास नहीं किया, वो बोले कि आप कहां जा रहे हैं, आप यहां बैठ के प्रसाद पाइए करके बोले। जैसे बूढ़ा व्यक्ति देखा कि वो इसको ये उठ गया है, तभी वो दौड़ने लगे। तो ये ब्राह्मण बोले कि आप क्यों जा रहे हैं, आप परेशान मत होइए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप यहां बैठ के खाइए, यहां बैठ के खाइए। मगर बूढ़ा व्यक्ति थोड़ी दूर गए और वहां पे क्या हुआ, एक पत्थर उनके पैर में लगा और गिरे। गिरने के बाद एक बहुत बड़ा सा पत्थर उनके सर पे लगा और वहीं पे शरीर त्याग दिए, वो मर गए, वो बूढ़ा व्यक्ति, वो ब्राह्मण जो प्रसाद लेके भाग रहे थे। ये सीन देखकर, ये घटना को देखकर ये जो पंडा है वो एकदम से उदास हो गए। इधर तो उनका बात सुन नहीं रहा था राजा, और समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा था, वो टेंशन था। कभी कभी हमारे साथ होता है, हम सभी भक्तों ने भगवान और राधा गिरधारी का, प्रभुपाद जी का सेवा करना चाहते हैं, मगर सेवा करने के दौरान क्या होता है, हम एक दृष्टि से सेवा करना चाहते हैं, मैनेजमेंट हमको कुछ दृष्टि से सेवा करने के लिए बोलते हैं और कोई अलग दृष्टि से बोलते हैं, तो कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन कंफ्लिक्ट होते हैं। तो उस दौरान कभी कभी हमें भी तनाव आता है, क्यों नहीं सुन रहे हैं ये लोग, ऐसे करने से कृष्ण की गिरधारी का सेवा अच्छा होगा, ये गलतियां हो रहा है, तो उनकी दृष्टि से वो सही लग रहा है, तो कभी कभी ऐसे तनाव आता है, और वो तनाव बहुत बढ़ता भी है कभी कभी अगर हम किसी का परामर्श नहीं लेंगे तो। तो इसीलिए ये पूजा, ये जो पंडित है वो बहुत उदासीन हो गए, वो सोचे कि इधर ये राजा भी इस प्रकार से बिहेव कर रहा है, मुद्गल ऋषि कोई निष्कर्ष में नहीं पहुंच रहे हैं, और मेरे द्वारा दोबारा कौन सा हुआ, ब्रह्म हत्या हुआ, मैं हत्या करना नहीं सोच रहा था, मगर मेरी कारण ये ब्राह्मण जो है वो मर गए, शरीर छोड़ दिए, अभी मैं जी के कोई फायदा नहीं करके वो तुरंत वहां पे आग लगाए, अग्नि प्रज्वलित किए और उस आग में अपने आप को जलाने के लिए वो अग्नि के अंदर प्रवेश किए। जैसे अग्नि के अंदर प्रवेश किए, यज्ञ देवता जो कि स्वयं विष्णु है वो वहां प्रकट हुए और तुरंत ब्राह्मण को लेकर अपने गोद में बिठाए, बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम आत्महत्या नहीं करना चाहिए? तो बोले कि मैं क्या करूं, एक तरफ ये समझ नहीं रहा है राजा कि आप श्याम सुंदर हैं करके, दूसरी तरफ मेरे द्वारा एक हत्या हो गई है, इसलिए मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं, मैं जी के कोई फायदा नहीं है। तो उनको सांत्वना दिए और भगवान बोले कि ठीक है, मैं आपका ही ड्रेसिंग, आपका ही जो ड्रेसिंग है मैं रोज एक्सेप्ट करूंगा, आपका ड्रेस को, यानी श्याम सुंदर की जो ड्रेस है फूलों से सजाया हुआ, उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा रोज। ये राजा छुप छुप के देख रहे थे ये पूरी घटना, जैसे ही भगवान ने उनको बोल दिया कि मैं आपका ड्रेस एक्सेप्ट करूंगा, राजा वहां पे दौड़ के आके जब भगवान के चरणों में गिर के रोने लगे। तो फिर भगवान राजा को भी लेके दूसरे गोद में बिठाए, बल्कि आपको क्या हुआ ना, मेरा क्या होगा, मैं जानता हूं आप द्वारकाधीश हैं, आप राजा है, आप तो ऐश्वर्य भाव से रहना चाहिए। बोले कि ठीक है, मैं आपका भी ड्रेस एक्सेप्ट करूंगा, तो पहले इनको बोले थे रोज एक्सेप्ट करूंगा, अतः अभी रोज शाम को जगन्नाथ जी को ये बड़ा श्रृंगार वेश में सजाया जाता है उस ब्राह्मण की बात रखने के लिए, और साल में लगभग 3 से 4 बार भगवान को राजा के रूप में सजाया जाता है। एक है सुना वेश है ना, सोने से एकदम गोल्ड से 1 टन सोने से सजाते हैं उसको, गोल्ड का ऑर्नामेंट्स होते हैं, और एक है राजा वेश, ऐसे करके 3-4 ये है ड्रेस है भगवान का जो कि राजा के जैसे सजाते हैं। तो तभी से क्या हुआ, रोज भगवान को शाम को ये बड़ा श्रृंगार वेश में सजाते हैं, और ये बड़ा श्रृंगार वेश किसके लिए, ये श्याम सुंदर गोपियां और राधा रानी की प्रतीक्षा में वो इस प्रकार से सज के रहते हैं, ये रोज शाम को सजाएंगे उनको, बहुत सा अलग अलग प्रकार के फूलों से, एक कपड़ा लगता है बाकी पूरा फूल, वो कपड़ा वो जो कपड़े से भगवान को पहनाते हैं उसको गीत गोविंद खंडुआ ऐसा नाम है कपड़े का, गीत गोविंद खंडुआ, खंडुआ मीन्स कपड़ा, और गीत गोविंद खंडुआ मीन्स उस कपड़े के ऊपर गीत गोविंद लिखा हुआ है, वो सिल्क का होता है और उसके ऊपर गीत गोविंद को पूरा लिखा हुआ है, क्योंकि गीत गोविंद भगवान जगन्नाथ जी का इतना प्रिय है, जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद, इसलिए पूरी गीत गोविंद को उसमें प्रिंट, एक्चुअली जयदेव गोस्वामी का इच्छा था, जयदेव गोस्वामी का यह इच्छा था, मैं अभी गीत गोविंद लिख दिया तो मैं भगवान को कैसे दूं। तब उनको भगवान बोले कि सपने में कि तुम वस्त्र के रूप में मुझे प्रदान कर सकते हो। तब जयदेव गोस्वामी एक वस्त्र बनाने वाले के पास गए, उनको बोले कि मैं गीत गोविंद वस्त्र में प्रिंट करना चाहता हूं। तो गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी बोलते थे और वो व्यक्ति ये बनाते थे, वस्त्र बनाते थे। तो वो गीत गोविंद खंडवा को रोज रात को पहनाते हैं और पूरा फूलों से सजाते हैं उनको, उससे बड़ा श्रृंगार वस्त्र कहते हैं, सजाएंगे फिर अल्टर बंद करके आ जाएंगे ऐसा। तो जब भी बड़ा श्रृंगार वेश हो जाता है, स्नान यात्रा के पूर्व दिन रात को बड़ा श्रृंगार वेश होने के बाद सुबह जब भी मंगल आरती में आते हैं, सभी वस्त्र उतारने के बाद पहले जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा मैया को बांधते हैं। जैसे हम रथ यात्रा को लेते जाते समय पहले बांध के पुजारी लोग तैयार रखते हैं ना, फिर हम लोग उठा के लेके जाते हैं बाहर, ठीक वैसे वैसे जगन्नाथ जी को अल्टर में बंधा हुआ रहता है, क्योंकि बहुत विशाल काय है, तो वहां से खोल के अलग से बांधेंगे ताकि उनको ले जाने में आसान होगा। फिर वो बांध के सजाएंगे, फिर मंगल आरती होगा, फिर बाल भोग होगा, बाल भोग के बाद बहुत सारा उनका आत्मन इत्यादि जो भी नित्य कर्म है वो सब पूरा करेंगे। नित्य कर्म इत्यादि जगन्नाथ जी का पूरा होने के बाद जगन्नाथ जी का पहंडी विजय होगा। पहंडी विजय आप लोग सुने रहेंगे। पहंडी विजय इसे कहते हैं, आप लोग को याद होगा जगन्नाथ रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी का हम यहाँ से उठा उठा के भक्त लोग कूद कूद के लेके जाते हैं ना स्टेज पर, उसको पहंडी विजय कहते हैं। विजय मतलब चलना या विजय करना, पहंडी मतलब स्टेप्स, पहंडी मतलब स्टेप्स। एक्चुअली उसके पीछे एक हिस्टोरिकल घटना भी है, कोई राजा ने कुछ ऐसे किया था, वो बाद में रथ यात्रा के समय हम सुनेंगे। ये पहंडी विजय दो प्रकार का होता है, एक होता है गोटी पहंडी और एक होता है धाड़ी पहंडी, दो प्रकार का पहंडी होता है। गोटी पहंडी धाड़ी पहंडी में अंतर होता है। क्या अंतर है? हम लोग यहाँ पे जो जगन्नाथ जी का पहंडी विजय कराते हैं, स्टेज में लेके जाते हैं, उसको गोटी पहंडी कहते हैं। गोटी पहंडी मीन्स जगन्नाथ जी को उठाए, सब भक्त लोग कीर्तन के साथ लेके गए, नाच नाच के उनको यथास्थान में रखे, वहां कीर्तन किए, फिर सभी लोग वापस आए, फिर सुभद्रा या दूसरे भगवान को लेके गए। पहले सुदर्शन, फिर बलदेव, फिर सुभद्रा, फिर जगन्नाथ। तो एक को रखने के बाद दूसरे को लेके जाते हैं, उसको कहते हैं गोटी पहंडी। मगर स्नान यात्रा के समय गोटी पहंडी नहीं होता है, वो धाड़ी पहंडी होता है। धाड़ी पहंडी मीन्स सुदर्शन निकलेंगे, उनके पीछे पीछे बलदेव जी निकल जाएंगे, उनके पीछे पीछे सुभद्रा मैया, उनके पीछे पीछे जगन्नाथ, ऐसे लाइन से निकल के चले जाएंगे लोग, रख के वापस नहीं आएंगे, एक साथ ही लेके जाएंगे उनको, इसीलिए उसको धाड़ी पहंडी कहते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार का पहंडी विजय होता है। तो स्नान यात्रा के समय पे धाड़ी पहंडी होता है भगवान का। धाड़ी पहंडी होने के बाद जैसे ही स्नान मंडप में पहुंचेंगे, पूर्व मुख करके उनको रखा जाता है। पूर्व मुख करके रखने के बाद पुजारी सबसे पहले कपड़े से भगवान का चेहरे को पोछते हैं, क्योंकि वो इतना परिश्रम किए ना, कभी उठने वाले नहीं है, एक जगह रहते हैं और चलते चलते बेचारे वहां मंदिर से उतरे हैं, फिर स्नान मंडप में चढ़ना मतलब वो ऊंचाई का काम है, वो चढ़ के आके बैठते हैं ना स्नान मंडप में, और धूप भी रहता है तो इसलिए पसीना छूटता है जगन्नाथ जी का, इसलिए पुजारी सबसे पहले उनका शरीर को पोछते हैं। मुख प्रक्षालन कहते हैं उसको, मुंह को धोते हैं और फिर कपड़े से पोछते हैं जगन्नाथ जी का शरीर को, वो जो कपड़ा रहता है उसको उतारता है, और बहुत प्रकार के विधियां, जो पूजा के विधियां, नीति कहते हैं उसको, उड़िया में पूछेंगे वहां पे, नीति खत्म हुआ क्या रे, नीति मतलब उनका पूजा विधि, हम समझ नहीं पाएंगे कौन सा नीति चल रहा है, उनका कुछ ना कुछ नीति चलता रहता है, वो उसको करेंगे। उसके बाद ये जो अधिवास गृह में 108 घड़ों में पानी रखा हुआ रहता है, वो पानी लेके आएंगे। 108 घड़ में पानी लाके उसको चार लाइन करके जगन्नाथ बलदेव जी के सामने रखा जाएगा, चार लाइन करके रखा जाएगा। फिर उन सभी पवित्र मंत्रों के द्वारा, उच्चारण के द्वारा, उस मटकों में से नारियल को निकाला जाएगा, उसको शुद्ध किया जाएगा। उसके बाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को उधर स्नान मंडप में बांधे हुए रहेंगे। फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया और सुदर्शन के साथ ये 108 मटकों का पानी को अभिषेक करेंगे। मगर उसमें भी नियम है कि 35 मटकों की पानी से जगन्नाथ जी का अभिषेक होगा, 33 मटकों की पानी से बलदेव जी का अभिषेक होगा, और 32 मटकों की पानी से सुभद्रा मैया का अभिषेक होगा, और बाकी जो है वो सुदर्शन जी का अभिषेक होगा। ऐसे हिसाब के अनुसार वो अभिषेक कराएंगे। अभिषेक होने के बाद जगन्नाथ जी का ड्रेस को तुरंत चेंज करेंगे। करने के बाद वहां पे हस्ती वेश या गणपति वेश कहते हैं उसको, जैसे आप लोग देखे अभी कितना सुंदर जगन्नाथ जी को गणपति के रूप में सजाया गया है। यहाँ पे स्नान यात्रा से भगवान नहलाने से पहले उनको गणपति बना दिए जगन्नाथपुरी में, स्नान के बाद उनको गणपति के रूप में या हस्ती वेश किया जाता है। वो हस्ती वेश भी यहाँ पे वहां पे अलग अलग मठों ने अलग अलग वेश बना के लाएंगे। कोई भगवान का कान बना के लेके आएगा, कोई सुंड बना के लेके आएगा, कोई उनका पगड़ी बना के लेके आएगा, अलग अलग मठ उनका नियम रहता है, हर साल वही लेके आएंगे। तो इस प्रकार से गणेश जी का वेश बनेंगे जगन्नाथ जी, फिर उस वेश में सबको दर्शन देंगे, फिर वो चले जाएंगे अण अवसर गृह में। आप सबको पता है यहाँ पे बंद हो जाता है अल्टर 15 दिनों के लिए, है ना, बीमार गिरते हैं उसको। अभी हमारे तो ये की है तो हम आधा बंद कर देते हैं, उसको अण अवसर गृह कर देते हैं, है ना। मगर वहां अलग सा एक बनाया जाता है अण अवसर गृह, उसको बांस की उससे बनाते हैं, उसको ताप्ती बोलते हैं उड़िया में, बांस से बनाते हैं अण अवसर गृह, उसके अंदर लेके जगन्नाथ बलदेव जी को रखा जाता है। सवर जाति के लोगों ने 15 दिन तक जो सेवा पूजा वो करते हैं। मगर हाँ, और उनका कथन है क्यों 15 दिन तक रखते हैं, क्योंकि असलियत में ये 15 दिनों में भगवान का नव कलेवर होता है। और साइंटिफिकली कहते हैं कि क्योंकि जगन्नाथ जी का जो शरीर है लकड़ी का है, और उसमें जो रंग लगाया गया है वो रंग इस प्रकार का नहीं होता है कि पानी से धुल जाता है वो रंग, तो स्नान कराने से पूरा शरीर काला काला हो गया रहता है। तो क्या होता है नव यौवन वेश, अर्थात उनको पेंट किया जाता है जगन्नाथ जी को ये 15 दिनों में। मगर असलियत में गौड़ीय भाव क्या है कि ये 15 दिन इसलिए अण अवसर कहा जाता है। अवसर मीन्स समय, अण अवसर मीन्स नो टाइम, समय नहीं, किसके लिए, हम सबके लिए। मगर टाइम किसके लिए है, लक्ष्मी जी के लिए टाइम है, क्योंकि जगन्नाथ उड़ीसा के राजा है और प्रतिदिन हजारों लाखों लोगों की समस्याओं को सुनते ही रहते, लक्ष्मी के बारे में ध्यान नहीं देते। अतः और अभी आगे रथ यात्रा आ रहा है तो उनको टेंशन होता है कि अभी मैं आगे जाके बाहर निकल के चला जाऊंगा कुछ दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, 9 दिन के लिए, मगर और लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो जाएगी, अतः मुझे कुछ दिन लक्ष्मी के साथ बिताना चाहिए, उनको समय देना चाहिए। यह सोचकर जगन्नाथ जी जो है ये बीमार का नाटक करते हैं, मेरे पास समय नहीं है करके हम लोगों को बोलते हैं, मगर वो श्री जी का लक्ष्मी जी का सेवा को स्वीकार करते हैं। इन 15 दिनों में लक्ष्मी जी उनका सेवा में लगी हुई रहते हैं, इसको अण अवसर समय कहते हैं। ये हमारा गौड़ीय भाव है और वहां पे प्रैक्टिकली कि उनका नव यौवन बनाया जाता है। तो ये मोटा मोटी रूप से स्नान यात्रा उत्सव है जगन्नाथपुरी में। तो जैसे हम लोग सुने हैं स्नान यात्रा के दिन ये हस्ती बेस हुआ है, इसके पीछे कथा हम सबको मालूम है कि एक गणपति भट्ट करके एक भक्त है, कि मैं कई बार सुना हूं और हम लोग सुनते हैं कि ये महाराष्ट्र के है करके, ये महाराष्ट्र के नहीं, ये कर्नाटक के हैं। कर्नाटक के गणपति भट्ट नामक व्यक्ति है भक्त, और ये भी सुनते हैं कि ये गणपति का भक्त थे करके, गणेश जी का नहीं, ये गणेश जी का भक्त नहीं थे, ये विष्णु का ही भक्त थे, भगवान विष्णु परम ब्रह्म का ही भक्त थे। मगर एक मिस कंसेप्ट उनके अंदर था कि परम ब्रह्म मीन्स उनका सुंड होना चाहिए, परम ब्रह्म मीन्स ऐसे सुंड होना चाहिए उनका, ये मिस कंसेप्ट उनके अंदर था। मगर वो परम ब्रह्म का भक्त है और भगवान विष्णु के भक्त हैं, वो सारे शास्त्रों को जानते थे, विद्वान ब्राह्मण थे, कर्नाटक में रहते थे, ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी और बच्चे थे। वो शास्त्रों का अध्ययन करते करते इस परिवार से इतना त्रस्त हो गए थे, वो सोच रहे थे कि इस धराधाम में कहां पे मैं परम ब्रह्म का दर्शन कर सकूं, इस धराधाम में कहां मैं परम ब्रह्म का दर्शन कर सकूं साक्षात। तो ढूंढते ढूंढते ब्रह्म पुराण में उनको ये दिखाई पड़ा कि नील पर्वत के ऊपर जगन्नाथ जी पूर्ण पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वहां पर जो जाकर एक बार उनका दर्शन करते हैं उनको मुक्ति प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म को जानते थे और ब्रह्म में मुक्ति पाना मतलब ब्रह्म में लीन हो जाना, क्योंकि भगवान का उपासना कैसे 3 प्रकार से होता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, 3 प्रकार से भक्त होते हैं, ब्रह्म का उपासना करते हैं, परमात्मा का उपासना करते हैं और भगवान की उपासना करते हैं। जो ये गणपति भक्त है वो ब्रह्म का उपासक थे, और ब्रह्म पुराण में ये पढ़े उन्होंने कि जो जगन्नाथ पुरी में जो ब्रह्म निवास करते हैं उनका दर्शन करने से मुक्ति हो जाएगा। ये सोच के बोले कि ये संसार तुच्छ है, यहाँ दुख के बिना कुछ नहीं है, पत्नी परिवार सब त्याग कर वो अपना ग्रंथ को साथ में लेकर वो निकल गए कहां पर, जगन्नाथ पुरी। अभी सोचिए कर्नाटक से चलते 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 वो आ रहे हैं कहां, जगन्नाथ पुरी में। आते आते बीच में क्या हुआ, जगन्नाथ पुरी पहुंचने से पहले वो थक के वहां निवास कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग हैं कुछ प्रसाद लेकर हंसते खेलते एकदम आनंद पूर्वक वापस आ रहे थे, बोले कि हे साधु संत, आप कहाँ से वापस आ रहे हैं, आप इतना आनंदित क्यों हैं? वे बोले कि हम जगन्नाथपुरी से वापस आ रहे हैं, हम परम ब्रह्म का दर्शन करके वापस आ रहे हैं, इसलिए हम आनंदित हैं। वो आनंदित है ये बात को जैसे गणपति भट्ट सुना वैसे वो दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? उनके मन में शंका हुआ, क्या पुराणों में गलत लिखा है? ये तो लिखा है। वो तुरंत अपना पोथी खोले और देखे, नहीं इसमें लिखा है जगन्नाथपुरी में परम ब्रह्म निवास करते हैं, जो एक बार उनका दर्शन करता है उसको मुक्ति मिल जाता है। अगर मुक्ति मिल जाता है तो ये लोग वापस कैसे आए? जैसे ही दर्शन करते हैं उनके अंदर लीन हो जाना चाहिए, मुक्ति हो जाना चाहिए था उनका, मगर ये तो वापस आ गए। तो वापस आ गए तो फिर परम ब्रह्म नहीं है वहां पर, ये शंका हुआ। अभी पत्नी छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिया, इतना दूर चल के आया और यहाँ पे परम ब्रह्म भी नहीं है, तो इस जीवन रख के कोई फायदा नहीं करके वो आत्महत्या करने के लिए विचार किए। जैसे आत्महत्या करने के लिए विचार किए, ये बात को भगवान जान लिए। वो तो सबके हृदय में निवास करते हैं, परमात्मा है। तो तुरंत भगवान एक ब्राह्मण के रूप में वहां प्रकट हुए। बोले कि अरे पथिक, आप कहां से आए हैं, आप थोड़ा द्वंद में लग रहे हैं। बोले कि क्या करूं ब्राह्मण देवता, मैं कर्नाटक इतने दूर से आया हूं परम ब्रह्म के दर्शन के लिए, मगर यहां आके पता लगा कि परम ब्रह्म है ही नहीं। बोले कि आप ऐसे कैसे कंफर्म कह सकते हैं कि परम ब्रह्म नहीं है? ना देखिए, अगर परम ब्रह्म होते, इतने सारे लोगों ने जाके उनका दर्शन किए, वो मुक्ति ना मिलके या उनके शरीर में ना मिलके वो वापस आ गए। तो ब्राह्मण बोले कि ओहो, ये शंका है आपका। तो देखिए, परम ब्रह्म सभी के इच्छाओं को पूर्ति करते हैं कि नहीं? ना करते हैं। जो भी उनको जो कुछ मांगता है वो देते हैं कि नहीं? हाँ देते हैं। अगर देते हैं, ये सब दर्शन के लिए गए और वो जाके उनको यही मांगे कि हमको घर गाड़ी बंगला मिल जाए, हमारा दुख चले जाए, हमको सुख मिल जाए, हम घर वापस जाए, हमारा घर सुखी हो जाए, सब परम ब्रह्म उनको सब कुछ प्रदान किए और वो वापस आए। अगर वो इच्छा करते मुझे मुक्ति पाना है तो उनको मुक्ति भी देते वो, क्योंकि वो सबकी इच्छा को पूरा करते हैं तो उनकी इच्छा को भी पूरा किए, अतः वो वापस आए। अच्छा, अभी समझ में आया गणपति भट्ट को ना, हाँ इन लोगों ने ये भौतिक सुख मांगा रहेगा और मेरी परम ब्रह्म उनको प्रदान किए रहेंगे, इसलिए वापस आ गए। तो ये फिर गए पूरी, और जाते जाते दैवात उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा था, और ज्येष्ठ पूर्णिमा में परम ब्रह्म जो दारू ब्रह्म के रूप में है वो अपने घर से बाहर निकल के पंडाल में बैठे हुए रहते हैं, पब्लिक पंडाल में, और उस पंडाल में स्नान यात्रा हुआ था। और स्नान यात्रा के समय दूर से देखे इतने लोग भीड़ है, और वहां पे सबको पूछे भगवान ये परम ब्रह्म जगन्नाथ निवास का विराजमान है, दर्शन करो। वो देखें कि सुंद नहीं है। उनका एक मिसकंसेप्ट था कि परम ब्रह्म मीन्स उनका सुंद होना चाहिए, तो और दुखी हो गए, वापस चले गए वहां से पुरी से। ऐसे कई भक्तों के साथ ऐसे जगन्नाथपुरी में हुआ होता है। तो वापस चले गए तो जो मुख्य पुजारी है जिनको मुदिरथ कहा जाता है, उनको भगवान जगन्नाथ सपनादेश दिए कि एक भक्त है जो अत्यंत मेरा भक्ति से मुझे दर्शन करने आया था, मगर उनके मन में है कि मेरा चेहरे में सुंड होना चाहिए, वो ना देखने के कारण वापस जा रहा है, तो आप जाओ उन्हें बुला के लेके आओ। तो पुजारी जाके समझाए तो उन्होंने कटु वचन से उनको बोला कि आप सब मुझे ठग रहे हो, ये परम ब्रह्म नहीं है। बोले कि नहीं, आप आके दर्शन तो करो एक बार। तो जब वो वापस आए तभी जगन्नाथ जी ये हस्ती वेश में उनको दिखाई पड़े। तब वो उस समय वो गणपति भट्ट ने प्रार्थना किए कि हे भगवान, कि इसी प्रकार से हर ज्येष्ठ पूर्णिमा में स्नान के बाद आप इस हस्ती वेश का दर्शन कराइए और मुझे मुक्ति दीजिए। उसी समय वो शरीर छोड़े, क्योंकि उनको मुक्ति चाहिए था, वो शरीर छोड़े और जगन्नाथ में लीन हुए, और उस दिन से ये प्रथा चलता आ रहा है। क्योंकि ये प्रथा स्कंद पुराण इत्यादि कुछ ऐसे जो पुराने ग्रंथ में जगन्नाथ जी के बारे में लिखा गया वहां पे ये नहीं है कि हस्ती वेश के बारे में, बाद वाले जो ग्रंथ है उसमें पाया जाता है ये हस्ती वेश के बारे में। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी का हस्ती वेश उसी दिन से होता है। ऐसे कई बार कई भक्तों के साथ होता है, पहले कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं, सुनते हैं कि जगन्नाथ कृष्ण है, राम है, विष्णु है, जाते हैं तो देखते हैं ये क्या बड़ा बड़ा आंख, मुंह, हाथ नहीं, पैर नहीं। तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने रामायण रामचरित मानस रचना किए, वे रामचरित मानस रचना करते समय देखे कि वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, रामायण युद्ध के बाद जब भी विभीषण महाराज बनाया गया, विभीषण जी को महाराज बनाया गया, राम ने बनाया भगवान ने, तो भगवान राम उनको एक कहते हैं कि हे विभीषण, जगन्नाथ इक्ष्वाकु कुल का कुल देवता है। जो रामचंद्र जिस कुल में है, इक्ष्वाकु कुल सूर्य वंश, ये सूर्य वंश का यह इक्ष्वाकु कुल का कुल देवता है जगन्नाथ, इसलिए तुम रोज जाना उनकी पूजा करने के लिए। कौन बोल रहे हैं? भगवान रामचंद्र। किसको बोल रहे हैं? विभीषण को। कभी बोल रहे हैं? त्रेता युग में। तो आप विचार करिए जगन्नाथ कब से हैं। तो ये बात पढ़े कौन? तुलसीदास जी ने। तभी तुलसीदास जी के मन में ये इच्छा हुआ कि मुझे अभी भगवान स्वयं है, मेरे राम, मेरे लक्ष्मण और सीता मैया है, तो मुझे दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो वो उत्तर भारत की ओर से वो आए जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। बहुत कठिनाई के साथ आए, मंदिर में गए, जगन्नाथ जी को अल्टर में जब भी देखे एकदम दुखी हो गए। बड़े बड़े आंख, इतना बड़ा सा मुंह, हाथ नहीं पैर नहीं, ये परम ब्रह्म है। वो देख के दुखी हो गए, किसी से कुछ बात नहीं किए, तो प्रसाद नहीं खाए, पानी तक नहीं पिए तुलसीदास जी वहां पे। वापस सीधा चल दिए, जैसे देखे वैसे सीधा वापस चल दिए। जाते जाते इस गांव दंड मुकुंदपुर गांव का नाम है एक, वहां तक गए। वहां पे जाके एक बहुत बड़ा वृक्ष के नीचे एकदम थके हुए रेस्ट लिए वहां पर। पूरी में भी रेस्ट नहीं लिए वो, कि मैं तो आया था मेरे राम को देखने के लिए, मेरे राम नहीं मिले। रेस्ट करते समय रात को जगन्नाथ जी, भगवान राम उनको पूछते हैं, हे तुलसीदास जी, आप याद करिए आपकी जो रामचरित मानस है उसमें क्या लिखा आपने। तो तुलसीदास जी याद करते हैं, उसमें एक चौपाई है, मुझे वो याद नहीं है, उसका अर्थ यह है कि बिन यानी पांवों के बिना तुम भागते हैं, आप भागते हैं बहुत तेज, हाथों के बिना आप इतना खाते हैं, ऐसे करके एक चौपाई तुलसीदास जी ने खुद लिखा भगवान परम राम के लिए, कि बिन हाथ आप खाते, ऐसे कुछ करके चौपाई है। हाँ बिन, बोलो बोलो, बिन पद चलाई सुने बिन काना। तो इस प्रकार से रामचरितमानस में लिखे हैं तुलसीदास जी। तो उनको याद आया, हाँ मैं तो लिखा हूं, पैर के बिना चल रहे हैं, कान के बिना सुन रहे हैं। तो फिर भगवान पूछते हैं, तो तुमने क्या देखा जाके वहां पर? हाँ आपका कान नहीं था, पैर भी नहीं था। तो फिर तब उन्होंने उठे और क्षमा मांगे भगवान को। फिर वहां से जगन्नाथ जी का मंदिर का शिखर का दर्शन करके आनंदित हुए और वो उस गांव से सुबह उठ के फिर वापस गए जगन्नाथपुरी। अभी जाके जब अल्टर में देखते हैं, वहां जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया नहीं थी, राम लक्ष्मण और जानकी मैया थी। ये है जगन्नाथ। हर समय श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद सबसे पहला विजिट कहां किए? जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी जाने से पहले या जगन्नाथपुरी में एंट्री करने के लिए रास्ता कौन सा है? अठरनाड़ा, एक ब्रिज है वो अठरनाड़ा है, मतलब वो ब्रिज है, वो 18 होल से पानी जाने के लिए उसका अठरनाड़ा कहते हैं। वो ब्रिज क्रॉस करके उनको पुरी जाना है सभी लोगों को। अभी तो अलग ब्रिज बन गया नया। तो चैतन्य महाप्रभु अठरनाड़ा तक गए तो वहां से जगन्नाथ जी का शिखर दिखाई पड़ा और शिखर में सबसे पहले उन्होंने क्या दर्शन किए? श्याम सुंदर कृष्ण को, और वहां बेहोश हो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु जब अंदर गए जगन्नाथ जी के सामने दर्शन करने के लिए, तो वहां पे इतने बड़े बड़े आंसू वाले जगन्नाथ नहीं थे, वहां पे मुरली लिए हुए श्याम सुंदर कृष्ण थे। और श्याम सुंदर को देख के तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे बेहोश हो गए थे। तो ये जगन्नाथ है। कि भगवत गीता में भी कहते हैं, जो जिस प्रकार की जिस भाव से मेरी उपासना करते, मैं उस भाव से उनके साथ प्रतिपादित करता हूं। तो इसे जो जिस प्रकार से मूल के भगवान के, जैसे वो गणपति भट्ट आए बोले कि उनको क्या कॉन्सेप्ट था, परम ब्रह्म का सुंड होना चाहिए, तो भगवान सुंड के रूप में, सुंड हस्ती के रूप में उनको दर्शन दिए। तो इस प्रकार से जगन्नाथ अपने लीलाओं को करते हैं जगन्नाथपुरी में। जहां तक जगन्नाथ जी का रूप के बारे में कृष्ण का ये वर्णन है, हम सबको पता है, कई बार सुनते हैं कि कृष्ण गोपी राधा रानी और ब्रज की विरह में ऐसी रूप हो गया है कृष्ण का, है ना। तो इसको खास करके जगन्नाथ जी को राधा विरह विदुर या गोपी विरह विदुर कहते हैं। वो कथा सबको मालूम है, इसीलिए हम संक्षेप में कहना चाहता हूं कि द्वारका में आने के बाद भगवान श्री कृष्ण हमेशा ब्रज के विरह में तड़पते थे और वहां पे ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियां, राधा रानी, ये सब भी भगवान कृष्ण के विरह में तड़पते थे। अभी जो ऊंचे कोटि के भक्त हैं वही इसको बहुत अच्छी तरह से बतला सकते हैं कि कितना तड़पते थे वो लोग कृष्ण के विरह में, और यहाँ पे कृष्ण कितना तड़पते थे। ये जो प्रेम है वो दोनों तरफ से होता है, केवल भक्त भगवान को करता नहीं, भगवान भी भक्त के साथ प्रेम करते हैं। जितना भगवान तड़पते हैं भक्त के लिए, जितना भक्त तड़पता है भगवान के लिए, उतना भगवान भी तड़पते हैं भक्त को, भक्त के सान्निध्य रहने के लिए। ये प्रेम होता है। इस भौतिक संसार में प्रेम नहीं, केवल काम है। हम उसको गलत फहमी है कि उसको प्रेम करके समझ कर हम सब संसार को चला रहे हैं, समाज को चला रहे हैं। तो ये जो द्वारका ब्रज का विरह, श्री कृष्ण द्वारका में विरह को जंत्रणा में विरह की अग्नि से दग्धीभूत हो रहे थे, उधर ब्रजांगनाएं विरह की अग्नि से दग्धीभूत हो रहे थे। यहाँ कृष्ण की ऐसी वेदनाएं, कहने के लिए कोई नहीं था कृष्ण के पास, वो ढूंढ रहे थे किसको बोलूं या कैसे मैं उनके पास जा सकूं। कोई सुविधा नहीं था ब्रज में जाने के लिए, कम से कम कुछ खबर तो भेज दूं, संदेश तो भेज दूं, और संदेश भी किसके साथ भेजूं। कोई एकदम इंटीमेट होना चाहिए, आत्मीय होना चाहिए, अपना होना चाहिए, जो कि ऐसी भावनाओं को मैं भेज सकूं संदेश को। वहां देखेंगे भागवतम में, वहां कृष्ण कहते हैं एक व्यक्ति है जो कि सबसे, यहां तक भी मेरे से भी ज्यादा वो मुझे प्रिय है, मेरे से भी ज्यादा मुझे प्रिय है, ब्रह्मा जी से, लक्ष्मी जी से, बलराम जी से, और मेरे से भी बड़ा, मेरे से भी मुझे प्रिय है, वो कौन है? उद्धव जी। उद्धव जी को बुलाते हैं कि आप मेरे प्रिय हैं, आप जा सकते हैं ब्रज में मेरे खबर लेके, उनको जाके बताओ कि जितना वो लोग तड़पते हैं उतना मैं तड़पता हूं। वो अपने बारे में छोड़ के गोपियों की जंत्रणा, गोपियों की दग्धीभूत अवस्था, गोपियों की विरह के बारे में उद्धव जी को बतलाने लगे गोपियां कैसे तड़पते हैं। श्री भगवान कहते हैं गोपियां मेरे विरह में एक सूखा पुष्करणी जैसा पड़े हुए हैं। गर्मी के समय पे कोई पुष्करणी है, तालाब है, वो किस प्रकार से सूख जाता है और फट जाता है, वैसे गोपियां ब्रज के पड़े हुए हैं। फिर कृष्ण कहते हैं देखिए वो बार बार मूर्छा चले जाते हैं, कई दिनों तक मूर्छित रहते हैं राधा और गोपियां, वो मूर्छा चले जाते हैं इसलिए जिंदा है, अगर वो मूर्छित नहीं होते तो मर जाते हैं, क्योंकि मेरा विरह का जंत्रणा इतना तीव्र है, वो मूर्छा होने के कारण उनका प्राण उनके हृदय में अभी तक बसा हुआ है, मूर्छित अवस्था होने के कारण, अगर वो मूर्छा नहीं जाएंगे तो उनका प्राण उनका शरीर छोड़ देगा, ये मेरा विरह है। मगर फिर वो कहते हैं उनका प्राण कैसा है पता है, जैसे गर्मी के मौसम में तालाब सूख जाते हैं, तालाब सूखने के बाद तालाब में जितने भी जलचर प्राणी सब खत्म हो जाते हैं, कछुआ भी क्या करता है खत्म होने की नौबत आता है, मगर वो क्या करता है कहीं पे थोड़ा सा पंख समझते हैं कीचड़, वो कीचड़ को ढूंढ के कीचड़ के अंदर घुस के उसमें रहने के लिए प्रयास करता है कछुआ टर्टल। एक बार मैं देखा था हमारा घर में, हमारा गांव में, मेरी माँ सुबह झाड़ू मार रही थी, गर्मी का सीजन था, झाड़ू मार के कचरा इकट्ठा करते हैं, वो तालाब नहीं कुछ नहीं तो कचरा हिलने लगा, वो डर गई, देखी तो कचरा हटा के देखी तो वहां पे कछुआ था बड़ा सा, ऐसे आके छुप जाते हैं कछुआ, तो कीचड़ में छुप जाते हैं। ठीक ऐसे गोपियों का हृदय और उनका शरीर सूख चुका है, मगर उनका प्राण रूपी जो कछुआ है ना, भगवान वहां पे गोपियों के प्राण को कछुए के साथ कहते हैं, और ये जो प्राण रूपी कछुआ है वो अभी तक जिंदा है। कैसे जिंदा है मालूम है, जैसे कछुआ कीचड़ के अंदर छुप जाता है वैसे ये प्राण रूपी कछुआ कहां छुपा हुआ मालूम है, एक कीचड़ के अंदर है। वो कीचड़ क्या है, मैं जब भी ब्रज छोड़ के जा रहा था ना उस समय मैं बोला था कि मैं वापस आऊंगा, वो जो सेंटेंस है कि मैं वापस आऊंगा वो सेंटेंस कीचड़ जैसा काम कर रहा है और गोपियों का प्राण उसके अंदर छुपा हुआ है, ये गोपियों का विरह है। ऐसे कह कह के भगवान कृष्ण रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगा। तो शोका चितेर शोक, भगवान ये शोक से परे हैं मगर अभी वो शोक कर रहे हैं, वो आत्मा राम है फिर भी दुखी है, इस स्थिति को देख रहे कौन, उद्धव जी। इस प्रकार से उद्धव जी को अपने बारे में और राधा के बारे में बोलते जा रहे और बोलते बोलते उनका इस प्रकार का महाभाव प्रकाश होता है वहां पर। फिर बाद में राधा रानी के बारे में बताते हैं, फिर बाद में एक कथा है राधा रानी के बारे में बतलाते समय, वो जब कृष्ण हमेशा द्वारका में क्या करते थे, कभी रात को सोते सोते कभी अचानक उठ जाएंगे, उठ के चिल्लाने लगेंगे, गोपी गोपी गोपी, राधा राधा राधा, खाएंगे नहीं ठीक से, हमेशा अन्य मनस्क रहेंगे, अन्य मनस्क रहेंगे। रानियां संकित होके पूछने लगे तो रोहिणी मैया से, रोहिणी मैया बोली कि हाँ मैं बतलाऊंगी ये कथा, मगर ये अत्यंत रोचक कथा है, साथ साथ में हमारे लिए डेंजर है। क्यों? क्योंकि अगर ये कथा कृष्ण और बलराम के कान में पड़ेगी तो ये दोनों इसी समय हमें छोड़कर चले जाएंगे, अतः मैं कथा बताते समय ये दोनों नहीं सुनना चाहिए। तो उन्होंने एक घर का व्यवस्था किया, सभी 16108 पटरानियां उसके अंदर, मगर कौन उनका कौन देखेगा कि कृष्ण आए कि नहीं, क्योंकि जत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहां पे मेरा भक्त लोग मेरे गुणगान करते मैं वहीं पे रहता हूं, और वो भी ब्रज का गुणगान, वो भी ब्रज की गोपांगनाओं की कथा, वो भी ब्रज की वृंदावन की लीलाएं, वो जहां पे चल रहा है कृष्ण कैसे रह सकते हैं कहीं पर, वो भाग के वहां आ जाएंगे और सुनेंगे तो चले जाएंगे यहां से, तो कौन रहेगा गेट पे। रानियां बोले हम नहीं रहेंगे। सभी रानियों से छोटी कौन थी? सुभद्रा मैया, क्योंकि वो क्या बोलते हैं ननंद है ना, तो ननंद को सब आदेश दिए कि हमारा आदेश है कि आपको गेट पे रहना पड़ेगा। तो बिचारी सुभद्रा मैया, उनको भी सुनने का उत्कंठा था, क्योंकि वो नहीं थी ब्रज में, वो वृंदावन में नहीं थी, वृंदावन में रोहिणी मैया थी, बलराम थे और कृष्ण थे, वो यहां थी। तो कथा स्टार्ट हुआ और सुभद्रा मैया भी गेट पे खड़े रहकर हाथ सीधा करके वो सुन रही थी ध्यान से, और ब्रज की गुणगान सुनते 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 आश्चर्य होते होते ब्रज की विरह का भाव सुभद्रा मैया में प्रकाश हुआ, उनका आंखें बड़े हो गए आश्चर्य से, हाथ छोटे छोटे हो गए, और ये कथा चलते चलते कृष्ण और बलराम रहने पाए अपनी सभा में, वो भी भागते हुए आए, कहां क्या हो रहा है, कहां गए सभी रानियां, और ढूंढते ढूंढते उस वहां पर पहुंचे, और वो आके देखे कथा चल रहा है, वो भी ध्यान से सुने, और तीनों ये कथा सुनते 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 इतना मग्न हो गए अपनी कथा में, अपने ही लीलाओं में, गोपियों की विरह में, राधा रानी के विरह में श्री भगवान जगत कृष्ण की, उनके अंदर महाभाव प्रकाश हुआ, आंख बड़े बड़े हुए, हाथ छोटे छोटे हुए, वो जगन्नाथ बलदेव जी का, बलदेव और सुभद्रा मैया का रूप बन गए। ये वो दिन है, आज के दिन ये कथा चल रहा था। तो ये जैसे ऐसे रूप हो गए, अभी भगवान नारद नारद मुनि, आप सबको मला पता है कि नारद मुनि का जो व्हीकल है वो क्या है, नारद मुनि का व्हीकल कौन सा है, गाड़ी मारुति 800 कौन सा गाड़ी है, मनयान है ना, वो अपने मन के हिसाब से चलते रहते हैं, वो जा रहे थे कहीं से, वो देख लिए इन तीनों का रूप, बोले कि ये क्या, नरसिंह अवतार देखा, मछली बन गए थे वो भी देखा, सुअर बने थे वो भी देखा, मगर ये कैसा रूप है, आंख इतने बड़े बड़े, मुंह बड़ा हो गया, हाथ पैर नहीं है, ये भगवान कृष्ण की कैसी लीला, ये तो कभी नहीं देखा था मैं। तो तुरंत वहां आए और वो प्रणाम किए और बहुत सारे श्लोकों के द्वारा भगवान को प्रार्थना करने लगे, तो भगवान तुरंत अपने बाह्य स्वरूप में कृष्ण के रूप में फिर आ गए। तो नारद मुनि बोले कि भगवान आप छुपाइए मत, मैं सब कुछ देख लिया हूं, आप कृपया इस रूप को, इस रूप के द्वारा आपका पूजा होना चाहिए, आपका दर्शन सभी लोग करना चाहिए इस रूप का, तब अपने भक्त की वाणी को रक्षा करने के लिए भगवान जगन्नाथ कहते हैं या कृष्ण कहते हैं कि मैं कलयुग में जगन्नाथ जी के रूप में वो नील समुद्र के किनारे निवास करूंगा, कलयुग के पति जीवात्मा का उद्धार करने के लिए। तो उस समय से जगन्नाथ वहां पे निवास करते हैं। फिर साथ साथ में ये कथा तो मालूम है कि ये जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा जी, एक बार क्या हुआ, ये सब मालूम है ना, जब बराहदेव का अवतार हुआ था उस समय क्या हुआ था, बराहदेव अवतार क्यों लिए, पृथ्वी को वो राक्षस ने, हिरणाक्ष ने क्या किया था, पानी के अंदर घुसा दिया था, है ना। तो जब पानी के अंदर घुसा दिया था राक्षस ने, बराहदेव क्या किए, पृथ्वी मैया को ऊपर लेके आ गए, मगर ऊपर लेके आने के बाद सृष्टि का सभी चीजें बिखर गया था, पृथ्वी का हरेक स्थान भी बिखर गया था, पर्वत इधर हो गए थे उधर हो गए थे, सब कुछ बिखर गया था। बराहदेव ने पर्वतों को अपना यथा स्थान में रख के पृथ्वी को स्टेबल कर दिए, वो रख दिए, मगर तीर्थ स्थान इधर उधर हो गया था, सब तीर्थ स्थान इधर उधर हुआ था। ब्रह्मा जी को टेंशन हुआ, अभी अभी बनाया था मैंने पूरा सृष्टि को, सृष्टि को बनाना खाने का काम नहीं है। कमल लोचन पो को पूछिए मंदिर कैसे चलाते हो खाने का काम नहीं है, कोई अगर कोई कंपनी का मैनेज करते कितने बड़ा, कुछ क्रिएट करना हो भी ओ, नाश करना तो आसान है। तो ब्रह्मा जी को बहुत सर दर्द हुआ, बोला कि ओहो अभी अभी बनाया था, अभी फिर से बनाना पड़ेगा मुझे, सभी तीर्थ स्थानों को अपने अपनी जगह में सेटिंग करना पड़ेगा, और ये बहुत सर दर्द वाला। मैं सोच रहा था थोड़ा हरे कृष्णा जप कर लो, अब ये काम आ गया, तो ये काम से कैसे बचूं मैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे कैसे ये अगेन फिर से सृष्टि का काम मेरे सर पे आया, क्योंकि मैं यही चीज को बनाया था अभी अभी, इससे कैसे बचूं। अच्छा इससे बचूंगा तो ठीक है, मगर इस संसार में जो लोग निवास करते हैं उनका उद्धार कैसे होगा, पृथ्वी में निवास करने वाले लोगों का उद्धार कैसे होगा, ये दो प्रश्न उनके मन में आया। दो प्रश्न लेके जाएंगे कहां, केवल एक ही स्थान है शरण जाने के लिए, वो कौन सा है, मुकुंद का चरण, अभय शरणारविंद। केवल संसार में एक ही स्थान है हमें शरण में जाने के लिए, वो है भगवान श्री कृष्ण की चरण। ये ब्रह्मा देवता सबको पता है, हम भी कुछ ऐसे लोग हैं या जो दैत्य बुद्धि के लोग हैं, वे लोग अपने इंद्रिय भोग के लिए, सुख सुविधाओं के लिए देवी देवता और इधर उधर चल जाते रहते हैं, मगर अगर किसी को असलियत में समस्या का समाधान चाहिए तो उनको किसके शरण में जाना चाहिए, भगवान मुकुंद के चरणों में जाना चाहिए। कितने उदाहरण है हमारे पास, ब्रह्मा जी को जितनी बार भी चार सर्प दुखते हैं वो कहां जाते हैं, भगवान कृष्ण के शरण में। शिव जी को समस्या आता है तो कहां जाते हैं, इंद्र को समस्या आता है तो कहां जाते हैं, विष्णु के, सभी देवी देवता उनकी शरण में जाते हैं। मगर हम सब क्या करते हैं, ये थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को ध्रुव महाराज के उदाहरण से भी समझना चाहिए, ध्रुव महाराज भी भौतिक इच्छा रखते हुए, लाभ को प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भगवान के पास गए थे, भगवान उनकी शुद्धिकरण के साथ साथ जो चाहिए था वो भी प्रदान किए। श्री कृष्ण स्टोर हाउस है, देवी देवताएं रिटेलर्स है, रिटेलर के पास जाएंगे हमको थोड़ा चढ़ा दर में ही सामान मिलेगा, अगर स्टोर हाउस में जाएंगे तो थोड़ा कम पैसा में मिलेगा। अल्टीमेट रक्षा केवल श्री कृष्ण कर सकते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को यह मालूम था और पूर्व सभी लोगों को यह पता हुआ रहता है। जल्दी खत्म करने का है, पहले के लोग भी इतना देवी देवताओं के पास नहीं जाते थे, ब्राह्मण इत्यादि, अब भी सभी जाते हैं। हमें अभी याद है पुराना एक, हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते समय एक प्रार्थना है, हम स्कूल में बोलते थे, उस प्रार्थना को बच्चों को सिखाया जाता है उस समय पे, वो बहुत पुराना प्रार्थना है, हम लोगों को भी सिखाया गया था वो प्रार्थना। अब भी मुझे पता लग रहा है कि वो एकदम वैष्णव फिलोसफी का प्रार्थना है, आहे दयामय विश्व भी, आहे दयामय विश्व बिहारी, यानी श्री कृष्ण के लिए वो प्रार्थना है, मुझे बुरे लोगों के साथ में मत रखो, मुझे साधु संग के लिए मुझे साधुओं के संग में रखो, ऐसा मेरे से कभी पाप ना हो जाए, वो बच्चे लोग उसको गाते थे उस समय भी, ऐसी ही शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे से सब बिगड़ गया, अभी बोलते ओ डियर गॉड प्लीज गिव मी माई डेली ब्रेड, अभी ये प्रार्थना करते। तो ब्रह्मा जी गए भगवान की शरण में, भगवान विष्णु के शरण में, जब भी प्रार्थना किए वहां पे भगवान विष्णु कैसी स्वरूप था, एकदम ब्लू कलर के मकर कुंडल पहने हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित पीतांबर पहने हुए ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को बोले देखिए आपका समस्या दूर करना है पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाइए, कौन बोलते हैं, भगवान विष्णु, वहां पर मैं शाश्वत रूप में निवास करता हूं, वहां जाओ, मेरा जिस रूप को अभी देख रहे हो ना उसी रूप वहां पे है, वहां जाओ तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहां गए, पुरुषोत्तम क्षेत्र में, वो कहां पे है, नील पर्वत के ऊपर। ब्रह्मा जी का डाउट था तो प्रलय के समय इधर उधर हो गया था, विष्णु बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि प्रलय का जल उसको स्पर्श नहीं कर सकता है, मेरी धाम को प्रलय का जल स्पर्श नहीं कर सकता है, वो शाश्वत है और मैं शाश्वत रूप में वहां रहता हूं, वहां जाओ। ब्रह्मा जी पहले वहां गए, कहां, ये नील पर्वत के ऊपर, ब्लू माउंटेन के ऊपर वहां गए। वहां जाके नील माधव का दर्शन किए। कैसी विग्रह था वो? वो ब्लू कलर के थे, मकर कुंडल पहने हुए थे, स्वर्ग की माला, स्वर्ग की फूलों की मालाएं सुशोभित हो रहा था, पीतांबर पहने हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म था। वहां भगवान नील माधव नाम से ब्रह्मा जी दर्शन किए, प्रार्थना किए, प्रणाम किए, बाहर आए, थोड़ा सा आगे देखे तो एक वृक्ष है वहां पर, कल्प वृक्ष, बहुत विशाल का है। उस वृक्ष के थोड़ा सा उत्तर में साइड में एक बहुत बड़ा सा कुंड है, वो है रोहिणी कुंड। और इस रोहिणी कुंड में जो पानी है वो कौन सा पानी है मालूम है? साधारण पानी नहीं, विरजा का, कारण सागर का पानी रोहिणी कुंड में है। प्रलय के समय पे ये कारण सागर का जल ही पूरी संसार को प्रलय करता है, प्रलयांत में ये पूरा जल इस रोहिणी कुंड में प्रवेश करता है। ब्रह्मा जी वहां आए। उस समय क्या हुआ, एक कौवा उस वृक्ष के ऊपर बैठा था, वो भगवान का दर्शन करके वृक्ष के ऊपर बैठा था, वो दर्शन करने के बाद वृक्ष के ऊपर बैठा था, ब्रह्मा जी के सामने ही वो रोहिणी कुंड में डुबकी लगाया और बाहर निकला। कौवा का शरीर वहां पर रुक गया, चतुर्भुज बन के वो भगवान के विष्णु लोक में चला गया। ये सीन को देखे ब्रह्मा जी ने, ये ब्रह्मा जी के समय हुआ था, हाँ ये कौवा का घटना उसके बाद नहीं। ब्रह्मा जी ने इसको देखे और इसको देख के एकदम आश्चर्य होकर देख रहे थे। उस समय इंद्र आ गए टेंशन, सॉरी यमराज आ गए टेंशन में, वो एकदम चिंतित थे। यमराज आके प्रणाम किए, नीलमाधव को प्रार्थना किए, बहुत सारे प्रार्थना किए, मगर मन की बात नहीं बता रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो वहां पे लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए, भगवान लक्ष्मी जी को इंगित किए कि बताओ इसको, किसको? यमराज को। लक्ष्मी बोलती है देखिए यमराज जी, आप जिस इंटेंशन से आए हो ना वो पूरा नहीं होने वाला। यमराज बोले क्या, आप चाहते हो कि हम यहां ना रहे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। यमराज चाहते थे कि भगवान यहां पे ना रहे। क्यों? क्योंकि नील माधव का दर्शन, रोहिणी कुंड में स्नान, कल्प वृक्ष छाव के नीचे बैठना, वो मुक्ति प्रदान कर देता है वैकुंठ में, चाहे वो कौवा भी क्यों ना हो। अभी कौवा पक्षियों में सबसे निकृष्ट है, कौवा पशुओं में सबसे निकृष्ट है कुत्ता। अभी निकृष्ट मनुष्य भी नहीं, पशु पक्षियों में भी निकृष्ट प्राणी कौवा का भी मुक्ति कैसे हुआ? चतुर्भुज के रूप में हो गया, वो मुक्ति पा लिया। तो इसीलिए यमराज को अपना पोस्ट का डर हुआ। अभी सभी अगर पशु पक्षी भी ऐसे जाते रहे वैकुंठ में तो मेरा क्या होगा, मेरी सेवा का क्या होगा? तो लक्ष्मी जी बोलती है कि इस जो पांच कोष के दौरान ये क्षेत्र है, या ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, इसके अंदर निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जीव के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। केवल उतना ही नहीं, कोई एक बार भी इस क्षेत्र में चरण रखते हैं उनके ऊपर भी आपका अधिकार नहीं है। ऐसे करके लक्ष्मी जी बोलते हैं किसको? यमराज जी को। फिर वो बोलते हैं कि इसके लिए देखो मार्कंडेय मुनि की कथा बतलाती है लक्ष्मी जी वहां पर, किसको? यमराज को। मार्कंडेय मुनि वो सात कल्प तक जीने वाले हैं। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन का समझते है ना समय सीमा, बहुत लंबा होता है। 14 मनु हैं एक दिन में, एक मनु के अंदर 71 दिव्य युग हैं, एक दिव्य युग के अंदर 4 युग हैं, 4 युग में से कलयुग का 432,000 x 2 द्वापर x 3 त्रेता x 4 सत्य, उस हिसाब से जाएंगे तो एक कल्प, और वो सात कल्प जिएंगे। और प्रलय चार प्रकार का होता है, मृत्यु, पृथ्वी के ऊपर प्रलय, देवलोक तक प्रलय, और एक ब्रह्मा जी तक का प्रलय, ऐसा होता है। तो जो ब्रह्मा जी के हर दिन में रात्रि के समय एक प्रलय होता है, मगर इसको सात कल्प जीना है ना मार्कंडेय मुनि को, तो इसलिए प्रलय के समय पे वो पानी में भटकते रहते हैं, कष्ट बहुत होता है प्रलय जल में तैरना मतलब। तो ऐसे प्रलय जल में मार्कंडेय मुनि तैरते हैं, वो शिव जी का उपासना किए हैं, वो यहाँ पे हमारा दर्शन किए हैं, प्रलय के समय हम शाश्वत रूप में यहाँ रहते हैं, इसलिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यमराज जी आपका स्थान यहाँ नहीं है, यहाँ के लोगों के ऊपर आपका अधिकार नहीं है, और समझना है शिव जी का प्रार्थना करो। तो यमराज जी गए शिव जी का उपासना किए, वहां पे एक शिव जी का मंदिर है यमेश्वर महादेव, आप सब जानते हैं। टोटा गोपीनाथ गए ना, टोटा गोपीनाथ टोटा गोपीनाथ के बाजू में देखो शिव जी का मंदिर है, वो अंदर उतरना पड़ता है नीचे, उसको यमेश्वर महादेव कहते हैं। हाँ, और यमेश्वर महादेव यमराज को कहते हैं, यहाँ पे आपका अधिकार नहीं है। हाँ, वो फिर उनका उपासना कहते, इसलिए उनका नाम है यमेश्वर, यमेश्वर महाराज। और खास करके क्षेत्रवासी जितने क्षेत्र में लोग हैं वो लोग यमलोक में नहीं जाएंगे, उसका गारंटी यमेश्वर महाराज का है, यमेश्वर महादेव का है, वो उनका गारंटी लेते हैं, वो यमलोक से मुक्ति दिला देते हैं, वो नहीं जाने देंगे उधर, यमेश्वर महादेव। ऐसे यमराज आए थे। तो ये शिव क्षेत्र की पहली कथा है, तो ब्रह्मा जी के समय का भी, सृष्टि के उधर उस समय पे बराहदेव के पृथ्वी का उद्धार के बाद। तो इस प्रकार की जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी निवास करते हैं सदियों से। श्री कृष्ण जैसा जगन्नाथ भी अपने जगन्नाथपुरी में अनेकों अनेकों लीलाएं करते रहते हैं। जैसे उस एक बार ऐसा हुआ, जगन्नाथ जी का एक पुजारी थे, जगन्नाथ जी का पुजारी, और जगन्नाथ जी का सेवा पूजा करने के बाद वो वापस जा रहे थे अपने घर में, वो अपने घर में वापस जा रहे थे। बीच में उनको दिखाई पड़ा एक, बहुत सारा मच्छी वाले बैठते हैं ना, बहुत बड़े मछली वाले, एक मछली दिखाई पड़ा, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा सा था। दो प्रकार का मछली, एक समुद्र का मछली होता है, एक मीठा पानी का मछली। वो मीठा पानी का मछली उसको दिखाई पड़ा, बहुत बड़ा था। तो उसको देख के लोभ हुआ, किसको, पंडे को। और पंडे जगन्नाथ का मुख्य पुजारियों में से एक है, और वो गए वहां पे, पैसा दिए, मछली को खरीदे, कागज में लपेटे, लेके चलने लगे। ये सारे सीन राजा का एक सैनिक दूर खड़ा रह के देख रहा था, बोला कि क्या अद्भुत घटना है। हाँ, कितना बदमाश ब्राह्मण है, भगवान का सेवा करता है, मछली खाता है। वो सीधा गया राजा को जाके बोले, महाराज वो पंडे जी जो है, हाँ, वो मछली लेके जा रहे थे, मछली खाते। राजा बोले कि नहीं नहीं, वो तो इतने भक्त हैं, सेवा पूजा करते, मैं खुद देखा हूं, अभी उसने खरीदा, चाहिए तो बीच रास्ते में बुलाओ, पकड़ में आएगा। तो तुरंत सैनिकों को भेजकर वो पंडे को बुलाया गया राज दरबार में। अभी राजा के सामने पंडे आए, पंडे जी को पता लग गया कि कुछ समस्या है, कि राजा को शायद शंका हुआ या पता लग गया है। अभी वो कांपने लगे और रास्ते भर प्रार्थना करते करते जा रहे, भगवान मुझे राजा के हाथ में नहीं मरना है, मरना है तो आपके हाथ में मरना है, मैं राजा के हाथ से दंड को स्वीकार नहीं करूंगा, इतना दिन सेवा पूजा किया, कुछ तो आप मेरा करना चाहिए। वो ऐसे भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते करते जा रहे हैं, इतना बड़ा संकट से बचाओ बचाओ, और हाथ में लिए हुए हैं मछली, और राजा के दरबार में खड़े हुए हैं। राजा प्रणाम किए, पूछे कैसे हैं आप, सेवा पूजा कैसे चल रहा है, सब बात हुआ। अच्छा, आपके हाथ में क्या है, चंदन, चंदन है हाथ में। राजा बोले, आप सही बोल रहे हैं, क्यों आपको शंका है मेरे बातों पे, चंदन है, रास्ते में आ रहा था, देखा बड़ा बड़ा चंदन बिक्री हो रहा था, असली चंदन चेक किया जगन्नाथ जी की सेवा के लिए, मैं सोचा अच्छा चंदन है, ले लिया मैं वहां से खरीद के। क्या ये भी नहीं कर सकता क्या, आप खोल के दिखा सकते हैं, आपको शंका है तो मैं क्या करूंगा, हाथ कहां पर आया खोलते समय, कांपते कांपते जब भी कागज को खोला वो चंदन का लकड़ी था। तो राजा आश्चर्य हुए और आके पंडे को क्षमा मांगे, और राजा पसीना पसीना हो गया था पंडा। बाद में पंडे जी सच बात को बताए कि महाराज मैं मछली खरीद के लेके जा रहा था, मगर ये सत्य है कि मैं नहीं खाता हूँ, मेरे पत्नी और बच्चे खाते हैं, क्योंकि मैं उनसे इतना आसक्त हूँ, क्योंकि मैं कितना सिखाने के बाद में भी मैं उनको नहीं सिखा पा रहा हूँ कि नहीं पाप करना चाहिए, मगर क्योंकि मैं आसक्त हूँ, उनको छोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं उनकी वांटिंग्स को, उनकी इच्छाओं को फुलफिल करना पड़ता है मुझे, मैं मजबूर हूँ, मगर भगवान मैं नहीं खाता हूँ। तो राजा एकदम आश्चर्य हो गए, और उस दिन से वो पंडे का नाम मात्सुआ पंडा मात्सुआ पंडा करके नाम पड़ गया उसका। तो ऐसी ऐसी कृष्ण जो है जगन्नाथपुरी में लीलाएं करते रहते हैं। ऐसी कई कथाएं, ऐसी कई कथाएं जगन्नाथपुर में जगन्नाथ करते हैं, मगर खास करके आज के दिन हमको एक कथा जानना जरूरी है, और उसी हिसाब से, उसी भावना से, उसी मूड से हमें जगन्नाथ जी को प्रार्थना करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। खास करके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जगन्नाथ जी का दर्शन कैसा करना चाहिए वो लिखते हैं, वो कहते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज हमें सिखाते हैं कि जगन्नाथ जी का दर्शन कैसा करना चाहिए। और एक बार गौर गोविंद महाराज भी अपने लेक्चर में कहते हैं, गौर गोविंद महाराज तो एकदम बहुत अच्छी तरह से कहते हैं, दर्शन कर लिया दर्शन जगन्नाथ जी का, बड़े बड़े आंख देख लिया तूने, हाथ नहीं था उसका, गौर गोविंद महाराज पूछते हैं। क्योंकि गौर गोविंद महाराज का पूछने का उद्देश्य यह है कि हमें जगन्नाथ जी को इस रूप में नहीं, हम गौड़ीय भाव श्री ये श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में दर्शन करना चाहिए। ये अत्यंत ऊंचा भाव है और जब तक हम उस स्तर में नहीं पहुंचते ऐसा दर्शन नहीं कर पाते हैं। हम केवल वही बड़े बड़े आंख और आधा हाथ वाले जगन्नाथ जी को देख पाते हैं। तो गौर गोविंद महाराज हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें जगन्नाथ जी का दर्शन ऐसा नहीं, श्याम सुंदर के रूप में करना चाहिए। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे ही जगन्नाथ जी का दर्शन किए वो श्याम सुंदर के रूप में उनका दर्शन किए थे, ठीक वैसे ही भक्ति सिद्धांत महाराज भी हमें सिखाते हैं कि कैसे जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए। वो अपने भक्तों को बोलते हैं, कुछ शिष्यों के साथ वो पूरी गए थे दर्शन के लिए, वो कहते हैं हमें जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज सीधा लिखते हैं, हमें जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं करना चाहिए, अपना भोग नहीं करना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए दर्शन करके, हम दृश्य है, भगवान जगन्नाथ दृष्ट है, दृष्ट मतलब जो देखता है, दृश्य मतलब सीन, जिसको देखा जाता है, सीन समझते हैं एक पिक्चर, वो दृश्य है, दृष्ट मतलब जो देखता है। पूरी संसार को देखने लायक कौन है, जगन्नाथ, वो देखेंगे, वो दृष्टि है और हम दृश्य है, हम उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, वो हमको देखेंगे, हम उनको देखने नहीं जाएंगे, वो हमें देखेंगे, उनके सामने जाएंगे तो हम नाच के खुशी नहीं होंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए हम नाचेंगे कीर्तन में, या मैं अलग अलग ढंग से नाचूंगा वैसे नहीं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मैं नाचूंगा। कठपुतली समझते हम जैसे नाचेंगे, कृष्ण कैसे खुश होंगे मनाने से। एक अद्भुत घटना और सीखने वाली, मैं उड़पी गया था कुछ दिन पहले, उड़पी में उत्सव ब्रह्म कहते हैं भगवान को, उत्सव प्रिय भगवान है, मूड है बाल गोपाल का और बहुत सारा वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स वहां पे मनाया जाता है। उसमें से डेली फेस्टिवल में एक एक काट फेस्टिवल, रथ यात्रा डेली होता है उड़पी में जब कृष्ण का। रथ यात्रा के समय मैं रात को देखा आग जला रहे हैं, एक कपड़ा है उसको तेल में डुबा के आग जला रहे हैं उनके सामने, उसका कोई मायने नहीं है, खाली आग जला रहे हैं उसमें, क्यों, बच्चों को ऐसे नटखट करने में अच्छा लगता है, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो की जा रही है। और पटाखे फोड़ रहे हैं बहुत सारे, आग जला रहे हैं, ये सब में से एक विचित्र घटना था, मतलब बहुत सीखने वाली बात थी। दो बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, को ऐसा इतने इतने ऊंचे की, वो दो बच्चे एकदम काला ड्रेस से ऊपर से नीचे तक ढके हुए हैं, इतना बड़ा बड़ा आंख किया गया सफेद सफेद, वहां पे होल किया गया और मुंह जो है ना ऐसा भूत जैसा किया गया, चोटी रखा गया वो कपड़े में, दो बच्चे हैं रात के समय और वो कृष्ण के सामने नाच रहे हैं। कैसे नाच रहे हैं, कोई ढंग नहीं, जैसे बच्चों के सामने खिलौने रखते हैं ना, खिलौने कैसे कैसे हरकतें करते हैं ना, ये दोनों बच्चे वो कृष्ण के सामने ऐसे नाच रहे हैं और दोनों बच्चे हैं। तो मैं वो देखा कि हमें कैसे कृष्ण की प्रसन्न करना चाहिए, वो दोनों क्यों नाच रहे हैं, पैसे के लिए ऐसा नहीं, वो क्या अभी इनकम करेगा बच्चा, उसके दिमाग में पैसा इनकम करने का विचार घुसा भी नहीं हुआ रहेगा, मगर वो क्यों नाच रहा है, ऐसा रूप अगर कृष्ण देखेंगे तो कृष्ण हंसेंगे। बच्चे अगर भूत देखते हैं कार्टून, खास करके कार्टून देखते हैं ना बच्चे, कार्टून देख के कितना खुश होते हैं, वैसे ये दोनों बच्चे उनके सामने नाच रहे हैं, पलटी मार रहे हैं, उछल रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, ऐसे हाथ कर रहे हैं, ऐसे हाथ कर रहे हैं। मैं किसी को पूछा ये दोनों बच्चे क्या ना, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नाच रहे हैं, तो ऐसे कृष्ण की प्रसन्नता। उस समय एक मजे की बात याद आया, एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, एक सिनेमा देखा था हम बहुत दिन पहले, सिनेमा की बात है, उसमें जो नायक है वो नायिका को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि नायिका उसको भूल गई रहती है, वो कौन है, वो व्यक्ति ही जो नायक उसको भूल जाती है, नायिका को प्रसन्न करने के लिए, नायिका को याद दिलाने के लिए ऐसे नाचता है, कभी बंदर बनता है, कभी कार्टून बनता है, कभी कार के ऊपर चढ़ता है, कभी आवाज करता है, मगर वो नायिका उसको पूछती नहीं है, पहचानती नहीं है। वो सीन मुझे याद आ रहा था कि देखो हम इस संसार में किसके लिए नाच रहे हैं, किसके लिए कठपुतली बन रहे हैं, किन किन लोगों के लिए कठपुतली बन रहे हैं, मगर हमें कठपुतली बनना है, हमको प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो भगवान जगन्नाथ जी के करना चाहिए, कृष्ण को करना चाहिए। तो इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज हमें सिखाते हैं कि हमें जगन्नाथ जी का दर्शन कैसे करनी चाहिए। वो लिखते हैं कि हमें जगन्नाथ देखना चाहिए, हमको चुपचाप खड़े रहना चाहिए। एक बार कोई बतला रहे थे भक्त, हमको खाली अटेंडेंस डालना चाहिए कि भगवान मैं उपस्थित हूँ आपकी सेवा में, आप हमें देखिए, मैं आया हूँ आपकी सेवा में, ऐसे आके चुपचाप खड़े रहना। हम देख कितना सुंदर सजाए ये वो देख के प्रसन्न नहीं। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन में जगन्नाथपुरी में गरुड़ स्तंभ से आगे जाके कभी जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया उन्होंने, वो हमेशा गरुड़ स्तंभ के पीछे रह के दर्शन करते थे। और वो क्या कहते थे उसके लिए, बोलते थे हमें दर्शन भी कैसे करनी चाहिए, गुरु जी के पीछे खड़ा रह के, गुरु जी के पीछे खड़े रह के हमें दर्शन करना चाहिए, गुरु जी के आगे खड़े रह के हमारा पीठ गुरु जी को करके नहीं। ये भक्ति सिद्धांत महाराज वहां लिखते हैं, गरुड़ जी हमारा गुरु है, वहां उनके पीछे रह के दर्शन करना चाहिए। और इस बात को चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे दर्शन करते थे, मगर चैतन्य महाप्रभु ऐसे दर्शन करने के पीछे और एक अंतरंग कारण भी है। क्या है पता है, क्यों चैतन्य महाप्रभु गरुड़ के पीछे से प्रणाम दर्शन करते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण विरह विदुर, वो राधा रानी के भाव में है, राधा रानी के मूड में, कृष्ण की विरह में। और राधा हमेशा किसको देखना पसंद करती है, किसको देखती है, कृष्ण को। गरुड़ स्तंभ के पीछे जहां चैतन्य महाप्रभु ऐसा हाथ रख के दर्शन करते हैं, वहां से अगर आप जाके देखेंगे ना तो बलदेव जी दिखेंगे ना सुभद्रा मैया, केवल जगन्नाथ दिखेंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि राधा रानी के मूड में है, राधा स्वयं है, इसीलिए वो गरुड़ स्तंभ के पीछे से खड़े रहकर देखते थे, वहां से केवल कृष्ण ही दिखाई पड़ते थे। तो खास करके ये जो समय है आज से शुरू होने वाला है, ये हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए एकदम विरह का दिन है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जगन्नाथपुरी में जब निवास करते थे, वो श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाया करते थे, रोज दर्शन करते थे, बहुत घंटों गरुड़ स्तंभ के पीछे रहकर दर्शन करेंगे चैतन्य महाप्रभु। मगर जब भी रथ यात्रा का समय आता था, खास करके स्नान यात्रा, स्नान यात्रा उस सब भी बहुत उत्साह से कीर्तन करेंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद खाएंगे, उसके दूसरे दिन से एकदम उदास। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी फिर दिखाई नहीं पड़ेंगे, दर्शन नहीं देंगे, और राधा श्री कृष्ण के दर्शन के बिना रह नहीं सकती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में एकदम दग्धीभूत होते थे, ये दोनों मिलन है, कृष्ण राधा विरह विदुर है और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह विदुर, ये दोनों का मिलन जगन्नाथपुरी में हुआ करता था। तो जब भी स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते थे, तभी श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत विरह में दग्धीभूत होते थे और एकदम कृष्ण के विरह में पागल जैसा भटकते थे, इधर उधर कृष्ण कृष्ण करके पागल जैसा भटकते थे। जंगलों में, घने जंगलों में ढूंढते थे, कहां है मेरे कृष्ण, कहां है मेरे कृष्ण करके। और वो ढूंढ ढूंढ के कहां जाते थे, अलारनाथ, है ना, गए कितने भक्त गए अलारनाथ, जगन्नाथ मंदिर के कुछ दूरी पे 20 किलोमीटर के दूर पे एक अलारनाथ करके एक मंदिर है, अलारनाथ। मगर वो अलारनाथ का मंदिर या वो विग्रह, कौन सी विग्रह है, विष्णु का विग्रह है, वहां शंख चक्र गदा पद्म के साथ चतुर्भुज के साथ भगवान विष्णु विराजमान है। और श्री चैतन्य महाप्रभु वहां जाया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु, एक मजे की बात है कि श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा अपने भक्तों को डराते थे भी, ज्यादा बोलोगे तो मैं अलारनाथ चला जाऊंगा, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे। और प्रताप रुद्र महाराज के समय पे उनके ऊपर कृपा करो करके भक्त लोग बोले कि मैं चला जाऊंगा अलारनाथ। परमानंदपुरी भी उन्होंने किसके ऊपर कृपा करने के लिए बोला था, तो उस समय भी चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं चला जाऊंगा अलारनाथ अगर बार बार बोलोगे तो बार बार अलारनाथ अलारनाथ की बात करते थे। एक्चुअली अलारनाथ में विष्णु है, कृष्ण नहीं है, मगर श्री चैतन्य महाप्रभु राधा है, राधा के मूड में है और कृष्ण की विरह में है, है ना। एक बार एक भक्त है चैतन्य लीला में, उनका नाम भूल रहा हूं, उनके ऊपर कृपा नहीं करूंगा बोले, क्यों? फिर बाद में उनको सिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु की हमें चतुर्भुज विष्णु नहीं, श्याम सुंदर कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि राधा हमेशा कृष्ण की उपासना करती है, राधा या गोपिया वो कभी विष्णु के प्रति या विष्णु के विग्रह के प्रति वो आसक्त नहीं होते हैं। हालांकि लक्ष्मी देवी कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट हो गई, वैकुंठ छोड़ के आ गई, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि गोपियां और राधा विष्णु के प्रति अट्रैक्ट हो गए हो। इसलिए विष्णु से भी अधिक आकर्षक कौन है? श्याम सुंदर। 64 गुणों कलाओं में से 4 एक्स्ट्रा कला है उनके पास, विष्णु के पास 60, उनके पास 4 एक्स्ट्रा। इसलिए लक्ष्मी भी अट्रैक्ट हुई कृष्ण के प्रति, मगर गोपियां राधा रानियों विष्णु के प्रति अट्रैक्ट नहीं हुए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इतना कड़क राधा कृष्ण की विरह में होते पर भी वो अलारनाथ जाया करते थे। क्यों अलारनाथ जाते थे? उसके पीछे श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज और खास करके गौर गोविंद स्वामी महाराज बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। जब भी श्री कृष्ण की विरह सताता था, चैतन्य महाप्रभु भटकते थे, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। खास करके कृष्ण लीला और चैतन्य लीला में अंतर नहीं है। तो एक बार कृष्ण लीला में भी ऐसे हुआ है, गोवर्धन में उधर ब्रज में गोपियों के साथ राधा रानी के साथ जब श्री कृष्ण रास में थे, उस समय अचानक श्री कृष्ण गायब हो जाते हैं। जैसे गायब होते हैं, राधा और गोपियां कृष्ण के विरह में पूरी वन में भटकते हैं, ढूंढते हैं कहां है हमारे कृष्ण, कहां है श्याम सुंदर। और एक जगह एक कुंज में एक वृक्ष के नीचे वहां कृष्ण चार भुजा वाले शंख चक्र गदा पद्म लेके खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, विष्णु बन जाते हैं वहां पर। और गोपियां वहां पे जाते हैं, गोपियां जैसे विष्णु के सामने जाते हैं तो बोले ये विष्णु है, हे नारायण आप हमारे श्याम सुंदर को देखा, तो ये क्या बताएंगे, फिर वहां से चले जाते हैं। क्योंकि उनको नारायण के प्रति लेना देना नहीं है, उनसे कृष्ण से, श्याम सुंदर। राधा आती है वहां पर, श्रीमती राधा रानी, राधा रानी जैसे आते ऐसे प्रणाम करती है तो कृष्ण के जो दो एक्स्ट्रा हाथ है ना वो गायब हो जाते हैं अपने से। कृष्ण भी अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर पाते, गायब हो जाते। कृष्ण देखते कहां गया मेरा दो हाथ, क्योंकि राधा रानी का जो इंटेंस प्रेम है कृष्ण के प्रति, श्याम सुंदर के प्रति, उस समय श्याम सुंदर भी अपना ये चतुर्भुज रूप उनके सामने दिखाई नहीं सकते। वो श्याम सुंदर चतुर्भुज के रूप में रुक नहीं सकते राधा रानी के सामने, ये राधा रानी का प्रेम है। तो ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा। राधा की भाव को अंगीकार किए हुए हैं वो, जगन्नाथ की विरह में, श्री कृष्ण के विरह में जब भी तड़पते हैं, तड़पते हैं, भटकते हैं, भागते हैं इधर उधर ढूंढते हैं, वो वन में भागते भागते वो ढूंढ रहे थे, उस समय ये अलारनाथ का मंदिर दिखाई पड़ा। और इस अलारनाथ मंदिर में गए और जाके जैसे दर्शन किए, वहां पे ये विष्णु मूर्ति उनको नहीं दिखाई पड़ा था, ये चतुर्भुज अलारनाथ नहीं दिखाई पड़े, वहां पे श्याम सुंदर दिखाई पड़े। और वहां पे प्रणाम किए श्याम सुंदर को, और उनके अंदर ये विरह का अग्नि इतना तेज था श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर कि उनके शरीर की उस अग्नि के कारण वो जिस पत्थर के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु लेटे होते वो पत्थर जो है वो पिघल गया था। वो पत्थर अभी भी है उस मंदिर में, वो अलारनाथ मंदिर में। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हर साल जब भी स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी का दर्शन क्लोज हो जाता था, बंद हो जाता था, उस समय वो कहां चले जाते थे? अलारनाथ में, अलारनाथ में जाके जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। अभी आप लोग क्या करेंगे 15 दिन तक? विरह तो निश्चय होगा, आप चिंता मत करिए, वापी आ जाइए, वहां पे जगन्नाथ जी दर्शन बंद नहीं करते, वहां पे खुला है। हम शाम को जगन्नाथ जी को नहलाएंगे मगर उनको बुखार नहीं आएगा, ऐसा इधर बुखार आ जाएगा, तो आप लोग वहां आ सकते हैं दर्शन के लिए। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु रोज ये 15 दिन तक का जो समय है वो अलारनाथ में बिताया करते थे। अलारनाथ असलियत में विष्णु का विग्रह है, मगर इंटेंस राधा के सामने ये विष्णु विग्रह टिक नहीं पाते हैं, वो श्याम सुंदर के रूप में दिखा दर्शन देते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वहां रहते थे। वहां पे एक बहुत सुंदर कथा भी है, आप सब जानते होंगे, अलारनाथ की पूजा जो ब्राह्मण करते हैं उनको कमा ब्राह्मण कहते हैं। ये कमा ब्राह्मण साउथ इंडिया के होते हैं। अलारनाथ का नाम ऐसा क्यों हुआ? वो जो पर्वत है ना वो असलियत में ब्रह्मगिरी है, वो पर्वत था, धीरे धीरे से समयानुक्रम वो छोटा हो चुका है, अभी खाली थोड़ा सा ऊंचा बच गया है, ब्रह्मगिरी है। बहुत सतयुग के समय की बात है, ब्रह्मा जी ने वहां पे भगवान विष्णु की उपासना की थी। भगवान विष्णु प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी को बोले कि आप मेरा विग्रह का स्थापना करो, मेरे पूजा करो। ब्रह्मा जी ने वो अलारनाथ का भगवान विष्णु का विग्रह स्थापना किए थे, और ब्रह्मा जी के कारण उस नाम उस जगह का नाम पड़ा था ब्रह्मगिरी। मगर ब्रह्मा जी के उपरांत उस जगह का पूजा विधि बंद हुआ था। बीच में साउथ इंडियन कुछ भक्त लोग वहां आए थे। आप सब जानते हैं हमारा जैसे षड गोस्वामी होते हैं ना, छह मुख्य गोस्वामी, वैसे श्री संप्रदाय के 12 मुख्य गोस्वामी होते हैं, उन्हें आलवार कहते हैं। ये आलवारों में से कोई आलवार वहां आए थे, वहां विष्णु की विग्रह देख के फिर से पूजा विधि चालू करवाए थे। क्योंकि आलवार लोग वहां आए, आलवारों की नाच के हिसाब से वो धीरे धीरे से आलार नाच हो गया, अभी आलाल नाच कहते हैं उसको, समयानुक्रम ये नाम बदल गया। आलवारों की नाथ है साउथ इंडियन भक्त आलवार, उनकी नाथ है आलवार नाथ, और धीरे धीरे से आलार नाथ ऐसा अभी हो गया है। ये ब्राह्मण पूजा करते समय फिर से बंद हो गया था, मगर पुरुषोत्तम देव की कथा आप सबको पता होगा। आपको पता है पुरुषोत्तम देव करके राजा थे, कांची राजा की लड़की के साथ उनका विवाह होना था, वो युद्ध करने के लिए गए थे। जब युद्ध करने के लिए जा रहे थे, बीच में आवाज सुनाई पड़ी, हे पुरुषोत्तम देव। बोले कि इधर कौन बुला रहा है मुझे। वो जाके देखे तो ये आलारनाथ है। लेकिन भगवान क्या करूं सेवा ना, आप युद्ध से वापस आना, युद्ध से वापस आने के बाद मेरा सेवा पूजा चालू कराओ, कब से ऐसे ही पड़ा हूं। तो पुरुषोत्तम देव वापस आने के बाद फिर से सेवा पूजा वहां चालू कराए थे, और तब से वो सेवा पूजा फिर से अभी चल रहा है। बीच में एक छोटा घटना हुआ था कि वहां के जो पुजारी है, अगर ठीक तरह से शिक्षा नहीं होगा, शास्त्रों का अध्ययन नहीं होगा, साधु संघ नहीं होगा, हम डीटी वर्शिप करते करते करने पर भी हमारा जो चेतना है वो एकदम से, हमारा हृदय कठोर हो जाएगा और हमारा चेतना भी एकदम भौतिक बुद्धि हो जाएगा, केवल ड्यूटी के लिए सेवा करने के लिए आएंगे। ऐसा धीरे धीरे से ऐसा हमारा भावना हो जाता है कि मेरा काम है, मेरा सेवा है, आएंगे फटाफट खटाखट खटाखट करके खत्म करके निकल जाएंगे और जाके फिर अपना एक्टिविटीज चालू करेंगे। ये क्यों ऐसा होता है, शास्त्रों का अध्ययन साधु संघ नहीं करेंगे, नियमों को ठीक से पालन नहीं करेंगे, साधना नहीं करें, तो वहां के ब्राह्मण पूजा करते करते उनके अंदर क्या था, मैं सेवा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि उसमें से मुझे खाने के लिए मिल रहा है, मेरा पेट चल रहा है, मेरा परिवार चल रहा है। एक दिन ऐसा हुआ था, एक कमा ब्राह्मण जिसकी सेवा था, वो अपने पुत्र को सेवा में लगा के वो गया था कुछ काम से। पुत्र को बोला था कि मम्मी ने खीर बनाएगी और तुम खीर भोग लगा देना। तो बच्चा लेके खीर भोग लगाया, वहां पर खीर भोग लगाया, बाहर आके खेला, आधा घंटे के बाद देखा वो खीर वैसे की वैसे ही है। बोला कि बच्चा, बोला आप खाए नहीं, आपको खाना पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो मेरा मम्मी बोलेगी तो तुमने खिलाया नहीं, भगवान को पिताजी चिल्लाएंगे। क्योंकि बच्चे का हृदय एकदम से निर्मल होता है, साफ होते हैं, रोने लगा, आपको खाना पड़ेगा। तो वहां पे आवाज आया कि नहीं, ऐसे नहीं होता है कि विग्रह खाता है, नहीं नहीं भोग क्यों लगता है, आपको खाने के लिए तो लगता है। रिक्वेस्ट किए, रोए उनके सामने और बाहर चले गए। फिर बनकर आप अभी इस बार खा लेना। तो फिर बाद में फिर 15-20 मिनट के बाद आए, तभी वो थाली खत्म हो गई थी। वो थाली लेके मम्मी को दिए, मम्मी बोली प्रसाद कहाँ है, प्रसाद क्या भोग चढ़ाया था खा गए भगवान। मम्मी बोली कि ऐसे नहीं हो सकता, वो विग्रह कभी खाता नहीं है, ये हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, विग्रह खाता नहीं है, भोग लगने के बाद हम टिफिन भरेंगे, तो ये प्रॉब्लम। क्यों, साधना श्रद्धा ये एक प्रकार की मायावाद है। मायावाद क्या है, विग्रह को विग्रह समझना, पत्थर समझना, वो खाते नहीं है समझना, वो समझते नहीं है ये समझना, ये मायावाद है। तो ये भक्तों के अंदर भी मायावाद हो सकता है, भक्तों के अंदर भी मायावाद हो सकता है। अगर हम भक्त को, मनुष्य को मनुष्य जैसा ट्रीट नहीं करेंगे, उनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, विग्रह को भगवान करके नहीं समझेंगे, तो ये भी मायावाद है। केवल प्रवचन देके मायावाद का खंडन करना नहीं, हमारे हृदय के अंदर की मायावाद को भी हमें खंडन करना चाहिए, नाश करना चाहिए। तो फिर वो जो बच्चा, उसका मम्मी बोले कि ठीक है तुम्हारा पापा आने के बाद पता लगेगा। उनके पिताजी आने के बाद जब भी बोले खाने के लिए, तो बोले कि खाना कहाँ है, 2-3 दिन से भोग लगा रहा है, बोलता है भगवान खा जाते हैं। बोले कि ऐसे कैसे चलेगा भगवान खा जाते हैं। तो बोला कि फिर से उसको बोलो भोग लगाने के लिए, और पिताजी छुप के देख रहे थे। जब ये बच्चा फिर से भोग लगाया भगवान का, भगवान को निवेदन किया कि आप स्वीकार करिए, तो स्वयं आलारनाथ भगवान बालक के रूप में आके वो क्या कर रहे थे, राइट हैंड से वो खीर उठा के खाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो तुरंत वो ब्राह्मण आए और भगवान का हाथ पकड़ लिए, और गर्म खीर था, झटक से पकड़ लिए, तो खीर उछल गया और उनके हाथ में गिरा, और ये भगवान का हाथ यहाँ पर जल गया। ब्राह्मण क्या बोलते हैं मालूम है, आप ऐसे रोज खा लेंगे तो हम क्या खाएंगे, आप खाने के लिए हम नहीं भोग लगाते हैं, हम टिफिन भरने के लिए भोग लगाते हैं। तो भगवान बोले कि मेरी भोग में भोग वृत्ति, ये महान पाप है। मेरे को भोग लगाने में भोग वृत्ति वो महान पाप है। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम्हारा पुत्र जो है ना वो मेरी धाम आएगा, उसके बाद तुम्हारा कुल, तुम्हारा वंश निपात हो जाएगा। इसलिए भगवान की संपत्ति को एकदम केयरफुली हैंडल करना चाहिए, केयरफुली हैंडल करना चाहिए। यहाँ उस घटना से हमें सीखना चाहिए। तो इस प्रकार की घटना ये अलालनाथ में हुआ था। तो इस प्रकार से अनेकों जगन्नाथ जी के लीलाएं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी करते रहते हैं, हमने सुने, स्नान यात्रा के बारे में सुने। इस प्रकार से हमारा ये जो भाव है जगन्नाथ जी के प्रति, श्याम सुंदर कृष्ण है करके रखना चाहिए। खास करके हमारे मीरा रोड वासियों के लिए जगन्नाथ जी का बहुत कृपा है ना। सबसे ज्यादा जितने हमारे कंग्रीगेशन भक्त है सबके घर में जगन्नाथ जी है ना। कितने लोगों के घर में जगन्नाथ जी है बताइए? बहुत लोगों के घर में जगन्नाथ जी है। हमारे इस्कॉन के ऊपर भी जगन्नाथ जी का बहुत कृपा है। सबसे पहला विग्रह कौन आए थे इस्कॉन में फेस्टिवल? सबसे पहला रथ यात्रा। तो जगन्नाथ जी का बहुत कृपा है। प्रभुपाद जी ने लिखते हैं एक जगह, प्रभुपाद जी ने किसके लिए लेटर लिखते हैं मालूम है? वो भाई जी के लिए लिखते हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार को एक लेटर लिखते हैं प्रभुपाद जी ने। वो लिखते हैं रिगार्डिंग द नंबर ऑफ आश्रम्स और टेम्पल्स आर ऑलरेडी लिस्टेड अबव, द डीटीज वर्शिप्ड इन द टेम्पल्स आर जगन्नाथ स्वामी विथ बलदेव एंड सुभद्रा एंड राधा कृष्ण। When we first start the temples, we start with Jagannatha Swami. My Guru Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, recommended temples of Jagannatha in this country. Hanuman Prasad ji kuch puche rahenge Prabhupada ji ko. Prabhupada ji ne letter mein likhte hain ki main jab is center shuru karte hain hamara, sabse pehle Jagannatha hote hain. Baad mein hum Radha Krishna ki deity ko laate hain. Kyunki Prabhupada ji aage likhte hain, Jagannatha ji kyun bane hain? Ek bhakt poochte hain. Prabhupada bolte hain Jagannatha ji Uriya aur Bengali logon ke liye bane hue hain. कृष्ण क्यों? क्योंकि उड़िया बंगाली लोग मछली खाते हैं और मछली खाने वाले राधा कृष्ण की उपासना नहीं कर सकते। जगन्नाथ जी सोचते कि इन लोग का उद्धार कैसा होगा, अपने आप को दारू ब्रह्म बना लिए। दारू ब्रह्म नीम की लकड़ी से बनता है, उसका उपासना कोई भी कर सकता है, कोई भी स्पर्श कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि बंगाली लोग कहते हैं जलेर फल मछली को, पानी का फल है मछली, तो प्रभुपाद कहते हैं बंगाली और उड़ियाओं के लिए कृष्ण जगन्नाथ बनते हैं। असलियत में हमारे लिए कलयुग के लोगों के लिए पतित पावन, आप सुने ना ये नाम पतित पावन, पावन मीन्स उद्धार करने वाला, पतितों को उद्धार करने वाले, इसके लिए फेमस है जगन्नाथ। एकदम नीच से नीच लोगों का उद्धार करेंगे जगन्नाथ, पतित पावन। इसलिए जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो झंडा उड़ रहा है ना बहुत बड़ा सा, रोज चेंज करते हैं, उस झंडे का नाम क्या है? पतित पावन बाना। झंडा किसका उड़ता है, किसका झंडा ऊंचा रहता है? जो जीतता है ना हमेशा। तो पतितों को उद्धार करने में जगन्नाथ जी से बढ़कर या जगन्नाथ जी से श्रेष्ठ कोई नहीं है, इसीलिए वो झंडा उड़ाते हैं मैं पतितों का उद्धार करता हूं करके, पतित पावन बना कहते हैं उसको। तो ऐसी जगह ऐसे जगन्नाथ, तो प्रभुपाद कहते हैं कि जगन्नाथ इसीलिए बने हुए हैं कि उद्धार। और खास करके प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से घर में जगन्नाथ जी को सेवा पूजा करेंगे, और ऐसे बहुत सारे खत अलग अलग भक्तों के पास लिखते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे इस्कॉन के लिए सबसे पहला आशीर्वाद जगन्नाथ जी का है, वही आए थे। तो हमारा सौभाग्य है आज हम लोगों ने जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा का दर्शन करेंगे। स्कंद पुराण में ये वर्णन आता है, जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी जगन्नाथ जी का बर्थिंग फेस्टिवल या ये स्नान यात्रा उत्सव का दर्शन करता है वो कभी इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता है। तो हमारा सौभाग्य आज जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा का उत्सव दर्शन करेंगे, फिर कुछ ही दिनों में लगभग 15 दिनों में 21 तारीख को जगन्नाथ का रथ यात्रा उत्सव हम लोग मनाएंगे। जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की जय।